ओम शांति। जूरिस्ट विंग के प्रोग्राम में जो भी भाई बहने आए हैं वह कृपया हॉल में पधारें, कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जूरिस्ट विंग ब्रह्मा कुमारी तथा राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के बैनर तले आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जो सफल राष्ट्रीय सम्मेलन रहा। आज इसका वैलिडेटरी सेशन है, समापन सत्र है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये समापन सत्र नहीं, ये विदाई सत्र नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। हर समापन नई शुरुआत होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस कार्यक्रम में आए हैं वो इस ज्ञान की अविरल अनवर्त बहती सरिता के इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाकर बड़े ही पावन हो चुके हैं। विधि की विधा में निपुण विद्वान इस कार्यक्रम में आए, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सब कानून के पथ पर डटे हुए न्यायवादी, न्यायप्रिय न्यायविदों का अभिवादन है, अभिवादन है, अभिवादन है। हमने उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित करके एक संदेश दिया कि हम सब भी कानून के इस पथ पर चलने वाले ज्ञान दीपक हैं। ज्ञान दीप सदा प्रज्वलित होते हैं और दूसरों को मार्ग दिखाते हैं, तो हम भी सत्य और न्याय का मार्ग दिखाने वाले दीपक हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कविता के माध्यम से कि हमें आने वाली चुनौतियों और संघर्षों में ये संकल्पबद्ध रहना होगा और अपने आप से ये कहना होगा, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। आज का ये सत्र हम शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर प्रॉस्पेरस जूरिस्ट, सफल समृद्ध विधि वेताओं के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। मैं आज के मुख्य अतिथि और सम्माननीय अतिथियों को मंच पर आगमन करने के लिए निवेदन करता हूं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विश्वरूप चौधरी, जज हाईकोर्ट कोलकाता, मंच पर पधारें और अपना सम्मान सहित अपना स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे गेस्ट श्री अवधेश प्रताप सिंह, एक्टिंग चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन एमपी भोपाल से पधारे हैं, आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे ऐसा मैं निवेदन करता हूं। राजयोगी बी के नथमल भाई जी कटक से, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जूरिस्ट विंग के, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। ब्रदर प्रशांत कुमार मिश्रा से मैं निवेदन करूंगा, जो कि स्पेशल जज विजिलेंस भुवनेश्वर से पधारे हैं, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी तालियों के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करते रहें। भ्राता राजकुमार यादव जी एडवोकेट और जूरिस्ट विंग के मेंबर हैं दिल्ली से पधारे, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर आकर। बी के मनोरमा दीदी रतलाम से और जोनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग से, आप पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी राठी इंदौर से हमारी जूरिस्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। बी के मुकेश भाई आहूजा न्यू दिल्ली से एडवोकेट और कार्यकारी मेंबर हैं हमारे जूरिस्ट विंग के, आप भी मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही सुंदर मंच सजा है। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगा कि वो तिलक, अंगवस्त्र और औषधीय प्लांट पौधा देकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। बड़ा ही अलौकिक और अद्भुत दृश्य है ये। हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस विश्वरूप चौधरी जी का सम्मान हो रहा है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी राठी वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग, भ्राता राजकुमार जी, भ्राता मुकेश जी आहूजा, आपका सम्मान हो रहा है। अरावली की हरी भरी वादियों में सजाई आबूराज आपका स्वागत कर रहा है। हमारे ऑनरेबल जस्टिस बी डी राठी जी ने बताया था कि आबू की पावन भूमि जो है तपोभूमि भी है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी 4 महीने तपस्या की थी, इसके बाद उनको शिकागो जाने का भाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने सनातन धर्म का परचम लहराया पूरे विश्व में। आज हम जिस भारत को बनाने की चर्चा करते हैं कि हमारा भारत कैसा हो, उस भारत की परिचर्चा, उस परिकल्पना को साकार करने का संकल्प प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने 1936 में ही ले लिया था और आज 140 देशों में भारतीय संस्कृति, भारतीय सात्विक भोजन और भारतीय परिधान को पहुंचा रही है और इसके निरंतर प्रयास में है। अब हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम की और विधिवत शुरुआत करते हैं।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है।
से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। दम से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिकरात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है।
ओम शांति। परमात्मा जी के आह्वान के बाद हम हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विश्वरूप चौधरी जी, जज हाई कोर्ट कोलकाता के उद्बोधन को सुनेंगे। आपका मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। आपने 1997 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, 1998 में एक वकील के रूप में पंजीकृत हुए। आप वर्ष 2004 में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित भी हुए। सन 2015 के अप्रैल माह से आप सीनियर से लेके सितंबर 2019 तक आप भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवाएं दी। आप वर्ष 2019 अक्टूबर माह से कोलकाता हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और सितंबर 2021 से स्थायी रूप से न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और अब मैं इनके बारे में, आपके बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। न्याय के पथ पर चलकर मानवता का मान बढ़ाएं, न्याय के पथ पर चलकर मानवता का मान बढ़ाएं, कानून के संग मूल्यों की ज्योति भी जगाएं, ज्ञान करुणा सत्य का संदेश घर घर पहुंचाएं, जूरिस्ट विंग के सदस्य बन विश्व शांति फैलाएं, विश्व शांति फैलाएं। मैं आपके बारे में ये कहना चाहूंगा कि इतने बड़े पद पर होकर भी आप इतने निर्माणचित हैं कि अमृत वेला योग भी आप हॉल में आकर कर रहे हैं। और आपने पुष्पा दीदी, डॉक्टर सचिन जी और शिवानी दीदी सभी की क्लास अटेंड की हैं और फिर उसके बाद अमृत वेला योग में भी सबसे पहले आकर पधारे हैं। तो अब उनसे उनके अनुभवों को हम साझा करते हैं। मैं आप निवेदन करता हूं ऑनरेबल जस्टिस विश्वरूप चौधरी जी को।
ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव असेंबल्ड हियर टू डिस्कस रिगार्डिंग स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट for the jurists. Before addressing on the issue, I convey my regards to the dignitaries on the dais. I convey my regards to the different members from the dignitaries who are in the audience. I convey my regards to all the brothers and sisters of the institution who have devoted themselves to arrange this program. I convey my regards to the brothers and sisters of this organization who have dedicated their life. They have sacrificing different luxuries, amenities in life, and rendering these spiritual services for the benefit of the mankind. So today we are to discuss the spiritual empowerment for jurists. So before proceeding to address on the issue, I would like to say that my speech, my belief, what I say today with regard to this spiritual empowerment is my personal belief. You may agree, you may not agree with me. You see, what I say with due respect, that after our country became free, we have this valuable, or this fundamental law, that is the Constitution of India. This Constitution of India has conferred different rights upon the citizens, different duties, has dealt with different powers of the executive, judiciary, legislature. The Constitution has conferred upon the citizen the liberty of faith, belief, worship. I respect all members following different religion. I respect faith of all of you. I respect belief of all of you. And I have also my personal belief. So whatever I address today is from my personal belief, and whatever enlightenment I have from this in particular institution. We see that this topic, spiritual empowerment of jurists and this value-based justice, it has two parts. One is the spiritual aspect, and with the other is the legal aspect. So far, the spiritual aspect is concerned. You see, what we say, what we believe, this is all our personal beliefs and the enlightenment we receive from this institution, or it may be from other institutions. Our respected sisters and brothers and resource persons yesterday and day before yesterday have enlightened us on that spiritual aspect. So there is no dispute with regard to that. We must be spiritually empowered to play our role. Now, we are born in a country. This is a holy land of ours where different saints, different sannyasis, different rishis were born, and people from different parts of the world came to our country considering this place to be a very holy. And different religions were preached. You see, in this holy land of ours, Buddha founded his religion of Ahimsa, Ashoka ruled with his edicts of Dharma, and Gandhiji owned freedom with the sheer force of Satyagraha. So, we must be proud in this particular, to be a citizen of this particular country. Now, with regard to spiritual empowerment, what I mean to say is this. We all have our own beliefs. For example, we belong to different religions. We carry out different rituals. We have different, there are different religious practices. There is no dispute about that. That is our faith, and we have every right to perform these religious practices. But the question is, are we aware of our role, about our own identity? Now, if I come to myself, during my childhood, I used to perform religious practices, hear religious texts, attend rituals, and do everything just like others. We are souls in a journey. And in a journey, if we are not conscious, if we are asleep, we may very well miss the station where we are to get down, where we are to. So, we have to be very alert. So, to some extent, although I was performing rituals, I was following religious texts, and I performed religious activities, but to some extent, I was not awake. So, in one fine morning, after seeing a program of this institution, program of Awakening with Brahma Kumaris, in which one of the sisters of this institution awaked us, enlightened us in the interaction program. So on that day, I awoke. So when we awake, we can proceed. But unless we awake, we cannot proceed in slumber. Now, you see, so for the spiritual empowerment is concerned, there is no dispute with regard to that. When doctors are required to be spiritually empowered, engineers are required to be spiritually empowered, administrators are required to be spiritually empowered, business professionals are spiritually be empowered, we cannot say that judges or advocates need not be spiritually empowered. So there is no dispute with regard to spiritual empowerment in discharge of our function. We require the blessings of the Almighty, the strength of the Almighty to proceed in our journey, to play our role, to discharge our function. But apart from that, what I think, what I believe is this. We all believe in our karma. So our karma should be good, so that our karma is pure. There are no vices. Now, we may very well say that our day-to-day karmas are good. We are doing good deeds. We are saying good words. Our behaviors are good. So many things we say. But you see, karma, as I believe, and definitely you may accept, that karma is not always created by the words or behavior. It is also created by our thought process. I just give you one example. Suppose, during my childhood days or during my college days, when certain news used to come in the newspaper that so many dacoits are killed in an encounter, or so many antisocial elements are killed in an encounter. So at that point of time, I used to rejoice that now our society is free from these antisocial elements, free from these dacoits or terrorists. But when we gradually come to knowledge, when we are matured, you see, when we see the news of the death of any persons, whether it is natural, whether it is unnatural, whether it is by encounter, whether it is by punishment, whatever it is, we should not create a thought that, yes, now we are relieved, this person has died, and we start rejoicing. No, that should not be our thought. We should not create our karma in that way, because we do not know what was that person's fault. And even if there was fault of that person, when the said person has left for heavenly abode, at least we should pray that the departed soul rest in peace. For example, when we hear the news of death of any person, either orally or we see in the newspaper, we don't rejoice. So just because in the newspaper some lines are there that this person was engaged in illegal activities or in dacoity or in terrorist activities, why should we rejoice? At least in silent, we should pray always that the departed soul rest in peace. Whether it is by natural death, whether it is an unnatural death, by whatever means, when a person has left for heavenly abode, we should pray that the departed soul rest in peace, so that we do not create some bad karmas. Another thing you see, we may claim ourselves to be very disciplined, very honest, and sometimes for some minor mistakes, minor breach of discipline, an employee is terminated from service. It is always not necessary that the removal order should be there in the disciplinary proceedings. Sometimes we say that, yes, we are very much disciplined, we are very much honest, we cannot tolerate any indiscipline, but at the same time you see, we should also be kind, we should also be human, we should also have that human aspect. Merely by saying that we are disciplined, we are honest, does not absolve us of that duty to be human and have compassion for others. Now, I come to the role of the jurists. We know that in administration of justice, there is role of lawyers and judges. Lawyers have role both in courts and outside the courts. For example, with regard to the non-judicial matters such as drafting of the agreements or drafting of conveyancing or causing of inspection of any title deeds or appearing before any administrative authority, these are not appearances before the court. Clients come to lawyer for legal advice. Now, so far, this category of clients are concerned for the purpose of drafting agreements, drafting conveyances, carrying out inspection for different type of, with regard to titles of the property. These persons are in a peaceful state of mind, come in the relaxed mind, and you have to do the needful. Here you are not required to come to court. Only thing is you have to draft the necessary conveyances, the deeds, and thereafter get themselves registered. Now we come to the second category. The clients who come to you for legal help for the purpose of litigation. You see, administration of justice involves function of lawyers and judges. Lawyers and judges, they are the two wheels of the chariot of justice. It cannot be a one-sided game. So, when some person comes to you for legal help, the first thing for you, as you have heard on earlier occasions, to be stable. Because when you are in a peaceful state of mind, you are in a stable mind, you can restore peace to a person who is upset about his problem. So, because you see, these litigants will not knock the doors of the court directly. They will knock your doors first. Take your assistance, take your help. After you get the thing ready, then they will follow you to the court. So, part of his agony, part of his anxiety should be completed in your chamber. The rest, you see, you have to do your duty and proceed to court. The case may be very complicated, the case may be simple, but you see, to render justice, you have to devote yourself for the case. Your client may make allegations against his opposite party, may be very much rude, may be very much upset, but you are not dealing with the opposite party because you cannot identify yourself with your client. You have to take up his cause, you have to see the facts of the case and the applicable laws, and thereafter prepare yourself accordingly and place it before the court of law. Yes, your clients will have definitely the hope to succeed in the litigation, but after you make your efforts, you do your duty, and you don't get the result, you should not get upset, or you should not start criticizing the system that you have not got justice. Because you see, after you have done your part and you have received the judgment, you see, if there is any particular points or law or any facts which is not considered by the court of the first instance, there is a provision of appeal. You advise accordingly and exhaust your remedy in appeal, so that your client will also know that there is nothing to be upset and there is a forum to exhaust the further remedy. Now, thirdly, you see, there are different cases also. You play the role of a lawyer, but the cases are not very complicated in nature. Hardly you have any role to play, but simply to appear in court. Just for example, a person's application is pending before the municipal authority for sanction of a building plan. The authority has neither allowed the plan nor rejected the plan. They have kept it pending for months after months. So, these persons, for example, you are going for the person, the applicant. So, it's not very complicated task. You have to just get an order, a direction, that they consider the case of this applicant in accordance with law after giving him an opportunity of being heard. Because the decision, the hearing it is to be done by the authority. Now, for example, you are not for that particular person who has made the applicant, but you are for the municipal authority. And you have to appear for the municipal authority, and you find that the municipal authority has not considered the application in accordance with law, then what you do? You have hardly anything to quarrel or argue. You just take some time on behalf of your client, that is the authority, about the time which is required to consider these applications in accordance with law, and thereafter the rest will be done by the authorities themselves. Secondly, there may be cases where you see an employee after retirement will goes to court that his retirement dues are not released. Now you are for the employer. Similar situation, you have hardly anything to argue or quarrel in court. You have to take necessary instructions from the other side with regard to relevant documents. You have to obtain some relevant time from the court to take and to take the decision and release the retirement benefits. So, different roles you have to play. One in contested cases, in the other, which is cases of formal in nature. Now, I come to another issue with regard to the judge's role. As discussed earlier, there should be pause in delivering judgment, definitely. Regarding spiritual empowerment, regarding pause, there is no doubt that it should not be a hasty decision. On the basis of facts, on the basis of applicable law, the judges are to take decision. Taking a decision, delivering a judgment means declaring the rights of the parties or refusing to declare the rights of the parties either in favor or in against. So, relevant care should be taken before passing the judgment. You see, another issue in different relations, different family disputes, matrimonial disputes. You see, courts, both judges and the lawyers, are sometimes in an embarrassing situation. It takes time to build up a relation. It takes time to arrange a marriage, then build up a family relationship. And then, you see, but for a court, it is just one stroke of pen to destroy something which is built after so much efforts. So courts have the duty under law to see that the disputes and differences in family between husband and wife are resolved and the marital tie is not broken. If after endeavor it is not resolved, then we have no other alternative. We have to do our duty and leave the rest to the Almighty. So, we have to play our role. Whatever is there under the statute, under the law, we cannot give anything better than that. We have to confine ourselves within the four corners of the law. When the law is silent on a particular issue under equity, we can try to fill up that lacuna. But under the normal course, whatever is there in the law, we have to follow that. Now, yesterday, another discussion was there whether justice, and very interesting topic, that whether justice is only in court or in other institutions. Yes, definitely, justice should be there in all institutions. For example, you see, in a particular institution, in a government department, or even a private company also, some allegation is made against an employee, against a workman, and all at a sudden, without causing any inquiry, without seeking any explanation, without trying to resolve the matter, all at a sudden this employee is terminated. Can we say that this is justice? And no, this is not a justice. This is totally injustice. And The moment these cases go to court, simply seated, this will be struck down against the principles of natural justice. So it is not that justice should always be in court. It has to be in other institutions. Other institutions should take decisions in accordance with the principles of natural justice, and the compassion, humanity should always prevail. Now, you see, there are other situations where parties come to the lawyers to move the court for certain reliefs, and at a certain point of time that relief cannot be granted. For example, you see, a particular matter came to our court where one of the parent was fighting for the custody of the child. So the case was pending for 2 years or 3 years, and in the meantime the child became major. So the courts at that point of time are not empowered to pass any order, because no order can be passed against the major child. So there is no legal rights, but can we say that there is no moral right? Yes, moral rights are there. In that case, the family, friends, relations, and the lawyers, by using their good office, will have to try to reconcile the disputes outside the court so that the relationship is restored. So, if we are able to discharge our duties sincerely, honestly, and by hard work, and after all, keeping ourselves spiritually empowered, then this temple of justice will really be a temple of justice. And definitely, by the grace of Almighty Baba, we will proceed further and further. I once again thank you all. I pay homage to the Dadis who have left for heavenly abode. I also pay respect to Brahma Baba who founded this institution to enlighten us. I once again thank you all for attending this program. Have a nice day and have a peaceful journey of life. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विश्वरूप चौधरी जी, जज हाई कोर्ट कलकत्ता. आपने कितने सुंदर विचार हमारे समक्ष रखे. मैं आपके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, न्याय की गरिमा को आपने जीवन भर निभाया है, सत्य और निष्पक्षता का सुंदर उदाहरण बन दिखाया है, विवेक विनम्रता और मूल्यों से समाज में राह दिखाई है. आपके श्रेष्ठ योगदान ने न्याय जगत में शोभा बढ़ाई है. अभी हमारे माननीय अतिथि जी को जाना है, इसलिए आपको सौगात देकर और प्रसाद देकर सम्मान किया जा रहा है, विदाई की जा रही है. आप सब जोरदार तालियां बजाएंगे. हमारे जस्टिस बीडी राठी जी आपको विदाई की सौगात देकर और प्रसाद देकर सम्मान कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं. मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये विदाई नहीं बधाई है. हमारी मनोरमा दीदी जी आपको सौगात दे रही हैं. ये यादगार है जो ऑफिस में लगा सकते हैं, जो अपने कमरे में लगा सकते हैं, उसको देखकर यहाँ के इन पलों की याद आ जाएगी. ये सब मानस पटल पर एक चलचित्र की तरह चल पड़ेंगे. और हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट श्री अवधेश प्रताप सिंह जी भी पधार गए हैं. आप एक्टिंग चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन एमपी से भोपाल से हैं. आप स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियों के साथ सभा में बैठे हुए सभी गणमान्य आपका स्वागत कर रहे हैं. अभी हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विश्वरूप चौधरी जी विदाई ले रहे हैं। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करता हूं कि श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का बैज पहनाकर अंगवस्त्र और औषधीय प्लांट देकर सम्मान करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, निस्वार्थ भाव से इतने सेवाएं करती रहती हैं। आप जी जरा जोरदार तालियां बजाएंगे अपने हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। स्वागत की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। अभी मैं हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अवधेश प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच अपने विचार रखेंगे। आप एक्टिंग चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन एमपी से हैं। मैं आपका संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। आपने भोपाल विश्वविद्यालय से एमए और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है। आप 1982 में भोपाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए थे। आपने 1985 में संसद के राज्यसभा सचिवालय में शासकीय सेवाओं की शुरुआत की थी। 1993 में आप विधानसभा सचिवालय से जुड़े और 1 जुलाई 2016 से लगातार विधानसभा के प्रमुख सचिव के पद पर रहे हैं। वर्तमान में आप भोपाल में मानवाधिकार आयोग के प्रमुख दायित्व को निभा रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी से कि वो अपना संबोधन हमारे समक्ष रखेंगे।
आज के इस बहुत ही विशिष्ट जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन में सुप्रीम जज को स्मरण करते हुए आप सभी को ओम शांति। मैं तो हाल ही में भोपाल से अभी बस दौड़ते हुए यहां पहुंचा ही था और मुझे मालूम नहीं था कि पहले ही नंबर मुझे बोलने के लिए आना पड़ जाएगा। लेकिन मैं अभी सोच ही रहा था कि चूंकि शुरू में नहीं रहा हूं तो कुछ वक्ता यहां रहेंगे तो मुझे सीखने को मिलेगा, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा। लेकिन जो ड्रामा जिसको कहते हैं वो है, वो अच्छा रहेगा। तो मैं यहां जाकर आकर के बहुत ही मुझे प्रसन्नता है आप सभी से मिलने की, और निश्चित तौर पर ये आध्यात्मिक परिसर अपने आप में अद्भुत है। और जो इस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक रखा गया, मैं विचार कर रहा था कि वैल्यू बेस्ड जस्टिस रखा गया है और फिर आज तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के पर चर्चा हो रही है। तो वैल्यू बेस्ड जस्टिस तो होता ही वैल्यू के आधार पर है। जस्टिस का यानी न्याय का तो आधार ही मूल्य होते हैं, लेकिन मूल्य आधारित जस्टिस रखने का क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समाज में जो हमारे मूल्य हैं, जीवन मूल्य हों चाहे पारिवारिक मूल्य हों, सारे क्षरण हो रहे हैं, घट रहे हैं। योग्यताएं भरी हमारी बढ़ रही हैं लेकिन मूल निरंतर नीचे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शायद इसी को ध्यान में रखते हुए कि सभी को मूल्यों का स्मरण कराया जाए, इसलिए वैल्यू बेस्ड जस्टिस का जो टॉपिक रखा गया वो बहुत ही सामयिक है। अब मूल्यों को चूंकि स्थापित करना है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रक्रिया ऐसी होगी जिसके आधार पर मूल स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन समाज में जितनी या हमारे देश में प्रदेश में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कहीं पर भी मूल थम नहीं रहे हैं, निरंतर मूलों में गिरावट चल रही है। तो इस दृष्टि से ये टॉपिक और ये स्पिरिचुअल जो रिट्रीट है ये बहुत ही उपयोगी है और न्यायिक व्यवस्था में तो है ही है बहुत उपयोगी। अभी तक मैं जो विधायी निर्माण की प्रक्रिया होती है या लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है, मैं विधायिका में काम कर रहा था और लंबे समय तक मेरा अनुभव विधायिका में काम करने का ही रहा है। अभी कुछ महीनों से ही मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में आया हूं तो मैंने देखा है कैसे कानून कोमा और फुल स्टॉप भी कानून में मायने रखता है, तो निश्चित तौर पर कई जगह जो चूंकि जैसे मैंने कहा कि वातावरण बहुत प्रदूषित है, समाज में मूल्यों की गिरावट जारी है, ऐसी परिस्थिति में चाहे लीगल फ्रेटर्निटी हो, जूरिस्ट हो या कोई और प्रोफेशन हो, सभी को अनेक प्रकार के तनाव दबाव प्रभावों के बीच काम करना होता है। और इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, उसके लिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट से अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। आज व्यक्ति अपने फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए सब कुछ करता है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक जाएगा, जिम जाएगा, योगा प्राणायाम करेगा, उसमें अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए उतना टाइम हम नहीं दे पाते। ज्यादातर हमने देखा है इतनी व्यस्त को मैं अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल कहता हूं, इतनी अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल हो गई है कि आप सुबह उठते हैं, जल्दी में आप तैयार होते हैं या मॉर्निंग वॉक चले गए, जिम के आए, फिर आर के बाद आपने घड़ी देखी, फिर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर या आपका मोबाइल देखा, और फिर बाथरूम नहाने के बाद फिर आप चले गए पूजा घर में, और आपने देखा कि जहां राम की, कृष्ण की, हनुमान की जितनी भी प्रतिमाएं या मूर्तियां लगी हुई हैं, आपने अगरबत्ती उन सभी को घुमाई, और कोई मंत्र यदि याद है तो 5-7 मिनट वो मंत्र किया और फिर वहां से निकाला, उसी बीच में आपने घर वालों को कहा कि ब्रेकफास्ट लगा देना, टाइम हो रहा है। ये जुरिस्ट की भी यही स्थिति है, अगर वकील है तो वो सारी फाइलें वगैरह देखेगा, तैयार करेगा रेफरेंस कैसे हमको प्लीडिंग करनी है, या जज हैं तो वो भी आगे दिन के अगले दिन की तैयारी करनी है, क्या कॉज लिस्ट में कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं उनकी सारी की तैयारी करते हैं, तो सारी व्यस्तताओं के बीच में वो दिनचर्या चलती रहती है, और उतने में आपने 5-10 मिनट ही जो दिया वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथनिंग के लिए था, जबकि फिजिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए तो आप 1 घंटा करके आए थे, योगा गए थे, जिम गए थे, दूसरी चीजें करके आए थे। तो परिणाम ये हो रहा है कि हमारी बॉडीली तो हम मजबूत हो जा रहे हैं या बॉडी कॉन्शियस तो हम रहते हैं, लेकिन जो आपकी इनर बीइंग है, क्योंकि वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन पार्ट जो हमारा है बॉडी का उसको तो हम स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन बीइंग जो है हमारा रियल जो अपना स्ट्रेंथ है वो वास्तव में कहीं पीछे छोड़ रही है, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए संसार में कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें किसी जिम में आप जाएंगे आपका इंटरनल स्ट्रेंथनिंग नहीं हो सकती, कहीं पे भी आप जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए आपको किसी सुप्रीम डिवाइन पावर की आवश्यकता है जो आपकी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर सकती है, और वो इसी तरह के आयोजनों से हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति फिजिकली तो दिखता है, उसको लगता भी है कि हम बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर ने कहा ठीक है ये विटामिन ले लीजिए, ये दवाई ले लीजिए, लेकिन यदि बाद में फिर वो कहता है सर मेरा मन अशांत है, उसको क्या करें, तो डॉक्टर कहता है उसका इलाज मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए आपको यही स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की आवश्यकता रहती है, जब आप मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको न्याय पूर्ण जस्टिस देना है तो आपका मन मस्तिष्क संतुलित होना चाहिए, शांति उसमें होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी डिवाइन पावर की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको स्पिरिचुअलिटी को भी समझने की आवश्यकता है। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, रहस्यवादियों ने अध्यात्म को ये कहा कि आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ना या निजी संबंध जोड़ना ही अध्यात्म है, या आपका खुद का अध्ययन ही अध्यात्म है, आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। फिर उन्होंने कहा कि यदि वो अध्यात्म से जुड़ता है कोई व्यक्ति तो उसको परमात्मा से सीधे संदेश प्राप्त होते हैं और वो दयालु होता है, उसमें करुणा होती है, वो सभी के प्रति संभाव रखेगा और सभी का कल्याण वो चाहेगा। तो इस तरह का संतुलन यदि लाना है तो आपको स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की आवश्यकता रहती है, और निश्चित तौर पर ईश्वरी विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं इस एम्पावरमेंट को ही करते हैं, तो इसको हमको जुड़ने की आवश्यकता है। मुझे एक भगवान का पत्र याद आ रहा जो उन्होंने जूरिस्ट के लिए लिखा था, सभी के लिए लागू है वैसे वो, लेकिन जूरिस्ट के लिए उन्होंने लिखा था खास तौर से, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में जाते हैं वो शाम को अपनी वहां सारा चैम्बर में जो भी आपकी फाइल देखी, फिर आपने वहां घर ले आए, घर आ गया, जज हैं तो वो जजमेंट डिक्टेट करते हैं, वकील है तो अपने रेफरेंस फाइल करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, तो वो फिर उसके बाद आप सो जाते हैं, तो भगवान ने कहता कि मैं वहीं खड़ा था, आपको तो हमारी हमसे बात करने की फुर्सत ही नहीं थी, जब आप सोए तब भी मैं बगल में था, फिर आप उठे आपने मोबाइल देखा, फिर आप घूमने चले गए, घूमने तब भी मैं साथ में था, फिर लौट के आप आए तो आपने फिर डाइनिंग टेबल पर थोड़ी देर बैठे, फिर आपने घर वालों का कोई नाश्ता लगाई, फिर नहाने के बाद आपने पूजा की, तब मैं वहीं खड़ा था, फिर गाड़ी में आप बैठे, सारी फाइलें लिए, आपने कागज देखे, पलटते चले गए, उस पर आप रुके रेड लाइट पे, तो वहां भी मैं बैठा था, मुझे लगा कि शायद अब आपका ध्यान मेरी तरफ जाएगा और मैं कुछ आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपने वहां भी नहीं देखा, आप अपना मोबाइल देखने लगे, दूसरी चीजों में व्यस्त रहे, और इसी तरह आप दिन भर अपनी दिनचर्या अपने चैम्बरों में रहे और मैं साथ में था लेकिन आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
तो भगवान ने कहा कि यदि आप काश हमारी तरफ देखते, आप मुझसे कोई संबंध बनाते, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करता, आपके कार्य में मदद करता और बेहतर ढंग से आपका जो जीवन संचालन है उसको मैं संतुलन कर सकता था। तो अध्यात्म का यही उपयोग है कि वो परमात्मा से जोड़ने की बात करते हैं। तो इस स्पिरिचुअल से अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से, क्योंकि पहले आपको खुद को समझना होगा कि आप वास्तव में क्या हैं, आप क्या बॉडी हैं, बॉडी तो नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी होती तो कोई तत्व इससे जो निकल जाता है फिर ये शरीर घर वाले भी घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। तो शरीर नहीं है हम, क्योंकि उस पर जो रथी विराजमान रहती है, जो चेतन ऊर्जा रहती है, जब वो निकल जाती है तो ये अरथी बन जाता है, फिर आपको शमशान में ले जाया जाता है। तो उस रथी को पहचानने की आवश्यकता है कि रियल मी कौन है, रियल आई कौन है। उसको जब आप पहचानेंगे फिर उसको डिवाइन सोर्स से आप जोड़ेंगे तब आपको अपना स्ट्रेंथनिंग आएगी, क्योंकि गीता में भी कहा गया है परमम स्वभावो अध्यात्म उच्चते, यानी स्वयं के स्वभाव में स्थित होना ही उच्च अध्यात्म है। तो स्वयं का स्वभाव क्या है? शांत चित्त, प्रेम, आनंद, ये स्वयं का स्वभाव है, ये हमारे आत्मा के मूल गुण है और इसी का सागर परमात्मा है। तो निश्चित तौर पर आज के जो आयोजन है उसमें हमको परमात्मा से जोड़ने का या सुप्रीम सोल से जोड़ने का जो साधन बताया गया है उसको यदि हम अपनाते हैं तो इन जितने भी दबाव तबाव हमारे प्रोफेशन में आते हैं उससे हम सामना कर सकते हैं, संतुलन के साथ चीजें बढ़ा सकते हैं। मैं तो चूंकि इससे जुड़ा हुआ हूं संस्था से, मैं राजयोग का उपयोग दैनिक जीवन में भी करता हूं, तो हालांकि विधानसभा में कई ज्यादातर तो प्रशासनिक चीजें रहती हैं, लेकिन विधानसभा कई बार कोर्ट का काम भी करती है और स्पीकर के पास सेमी जुडिशियल कोर्ट का काम करने के अधिकार भी हैं, जैसे खास तौर से एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में। तो कई बार ऐसा प्रेशर आया, अभी पिछले इसी विधानसभा की बात है 1920 या 22 में हमारे यहाँ जो रूलिंग पावर रूलिंग पार्टी थी उसके 15 से 20 एमएलए ने दूसरी रिजाइन कर दिया, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से मेंबरशिप से रिजाइन किया, उस पार्टी से रिजाइन कर दिया और अब जो पार्टी इन पावर थी वो माइनॉरिटी में आ गई। तो तरीका ये था कि भाई हाउस बुलाया जाए, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखें और प्रूव करें कि आपके पास विश्वास है कि नहीं है, या फिर माइनॉरिटी में है तो जो अपोजिशन है उसको अवसर दिया जाए। लेकिन जैसा रहता है जो सत्ता में है, जो पावर में है, वो किसी तरह से बाई हो को क्रूप पावर में रहना चाहते हैं। तो स्पीकर ने कहा कि नहीं, ये जो जिन्होंने रिजाइन किया है इनको आप आधो को डिस्क्वालीफाई कर दो। तो हमने कहा डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी तो दूसरी ज्वाइन की नहीं है और एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए अलग प्रोसीजर है, वो आपका सेमी जुडिशियल वर्क है, हम दो को उसके लिए अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। बोले नहीं वो तो हो सकता है, हम स्पीकर कह रहा है। तो मैंने कहा नहीं स्पीकर, फिर अब तक उन्होंने ये तक कहा कि स्पीकर की चलेगी कि आपकी चलेगी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की चलेगी। मैंने कहा चलेगी स्पीकर की, लेकिन नियम प्रक्रिया से, रूल के हिसाब से। अल्टीमेटली चलती रही काफी जद्दोजहद, फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़े वकील से आपकी दिल्ली में बात कराता हूं, कैसे हम इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। हमने कहा चलिए कराइए, तो उन्होंने वहां बात कराई हमारी दिल्ली। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये इनके सेमी जुडिशियल वर्क है, इन्होंने रिजाइन किया है, दूसरी पार्टी ज्वाइन की होती तो ये लगता, और फिर मैंने कहा उसके लिए पिटीशन लगती है, फिर उस पर विचार होकर के स्पीकर निर्णय लेते हैं। तो ये तो इन्होंने तो सिंपल रिजाइन किया है। तो स्पीकर को फिर वो समझ में आया कि नहीं ये पीएस सही कह रहे हैं, बोले हम इसके लिए पिटीशन लगवा देते हैं। तो मैंने कहा पिटीशन भी आप लगवाएंगे तो हफ्ते 10 दिन में निर्णय नहीं होगा। बोले फिर मैंने कहा सामने वाले पक्ष को नोटिस जाएगा, उनको भी हमको सुनना पड़ेगा, फिर बैलेंस करके फिर आप निर्णय दोगे। तो अल्टीमेट चलता रहा, फिर हाउस बुलाना पड़ा और वहां काफी हंगामा हुआ दोनों तरफ से, क्योंकि हमारी सीट बीच में रहती, स्पीकर की एक तरफ सत्ता पक्ष रहता है, एक तरफ विपक्ष रहता है, और काफी अपनी अपनी बात कहते रहे, लेकिन अल्टीमेटली ये था कि चूंकि माइनॉरिटी में थे तो गवर्नमेंट तो जानी थी। काफी शोर शराबा हुआ, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी, हम बीच में बैठे थे, हम तो अपना हेडफोन लगा के। फिर हाउस एडजर्न हो गया, दूसरे अपोजिशन को नेचुरली फिर दूसरी गवर्नमेंट बनी। जब हम बाहर निकले तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स और बड़े लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने पीछे से आवाज दी, सर सर मैंने बताई कि इतना हंगामा हो रहा था, लोग नारेबाजी कर रहे थे, आपकी टेबल पर ठोक भी रहे थे और आपने तो एकदम शांति से बैलेंस बना। मैंने कहा मुझे वहां निष्पक्ष रहना था और ना किसी की पार्टी नहीं बनना था, तो कैसे आपने ऐसा कर लिया? तो मैंने कहा हमने ऐसा कर लिया कि यदि आप राजयोग अपनाओगे तो आप भी ऐसी परिस्थितियों में बैलेंस बना सकते हैं। तो ये वही संस्था है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्पिरिचुअल रिट्रीट से हम सब सीख के जाएंगे और स्पिरिचुअली एम्पावर होकर के अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में और दैनिक लाइफ में बेहतर परिणाम देंगे और न्याय भी जो है उसके उसको भी हम वैल्यू बेस्ड बना सकेंगे और एक अच्छा संतुलित जीवन भविष्य में जी सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यहां बुलाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी का, आपने बहुत ही अच्छा अनुभव साझा हमारे साथ किया। आपने कितना अच्छा बताया कि आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है। आपके लिए मैं सिर्फ दो चंद लाइनें कहना चाहूंगा। कर्तव्य सत्य और सेवा का सुंदर संगम हैं आप, न्याय के पथ के सच्चे और सम्मानित संरक्षक हैं आप। अपने ज्ञान और नेतृत्व से सबको राह दिखाते हैं। एक्टिंग चेयरमैन बन समाज में मूल्य की ज्योत जलाते हैं। अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर राजयोगी बीके नथमल भाई को आमंत्रित करता हूं। आप अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। आपका मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। आप 52 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान में चल रहे हैं और 51 वर्षों से समर्पित रूप से कटक में ओडिशा में सेवाएं दे रहे हैं। आपको 25 राष्ट्रों का नागरिक सम्मान हुआ था नेपाल में, उनमें आपको आमंत्रित किया गया था और आप ब्रह्मा कुमारी ज्यूरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने जहां भी सेंटर्स पे आर्ट गैलरी देखी होगी तो हमारे आदरणीय नथमल भाई जी उसी का निर्माण करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो हम उनसे अपने उद्बोधन को सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बीके नथमल भाई जी को।
ओम शांति। सभी बोले ओम शांति। ओम शांति। आज के हमारे मुख्य अतिथि विश्वरूप चौधरी जी, उनको उदयपुर जाना था क्योंकि उनकी फ्लाइट है। बहुत ही सुंदर आपने अपने विचार रखे थे। और हमारे आज के विशेष अतिथि अवधेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बहुत सुंदर विचार भी रखे और उन्होंने बताया भी कि मैं दौड़ता दौड़ता आया हूं, तो वास्तविकता यही है कि हम सारे लोग दौड़ रहे हैं। अब वो किधर किस लिए दौड़ रहे हैं वो तो हर एक का अपना विचार है और अपना व्यवहार है, लेकिन दौड़ सभी रहे हैं। और हमारे प्रशांत कुमार मिश्रा जी, जो खास हमारे उड़ीसा से भुवनेश्वर से पधारे हैं, और राजकुमार यादव जी, जो वास्तव में एक राजकुमार की तरह से जीते हैं अपने जीवन को, तो आप भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। और हमारी मनोरमा दीदी जी बहुत ही शांत मूर्त, और आज आप सबको परमात्मा से मिलन कराने के लिए, योग सिखाने के लिए उपस्थित हैं। और हमारे ऑनरेबल जस्टिस राठी साहब, मैं हमेशा आपके लिए कहता हूं कि आप वो व्यक्तित्व हैं, क्योंकि आज तक सारे लोग यही कहते हैं कि जुडिशरी जो है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए उनको मुश्किल होता है, लेकिन आप जब से जुडिशरी से जुड़े हैं तब से ब्रह्मा कुमारी के ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर के रेगुलर पढ़ाई भी करते हैं, योग सीखते हैं और अनेक आत्माओं को सिखाते भी हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा हमारे ऑनरेबल जस्टिस बीडी राठी जी और मुकेश भाई, जो खास दिल्ली से पधारे हैं, और हमारे प्रदीप भाई, जो मंच संचालन बहुत सुंदर तरीके से अपनी विचार रखते हुए कर रहे हैं। आज का ये जो विषय, और ये विषय रखा गया है समापन सत्र में, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, क्योंकि आप सभी आज के बाद में अपने फील्ड में जाएंगे, तो उस फील्ड में जाने के पहले अपनी आत्मा को अगर इंपावर करके जाएंगे तो अपने फील्ड में सक्सेस होंगे और उसी के प्रयास के लिए उसी सेवा के लिए कहो ये ब्रह्मा कुमारी बहने या ईश्वर विश्वविद्यालय ये आप सबके लिए कार्यक्रम रखा गया था। मुझे आशा है विश्वास है कि 3 दिन में आपने अपनी आत्मा को जरूर इंपावर किया होगा और अब उसी चीज को फाइनल जैसे को कहते ना कि फाइनल जजमेंट दिया जाता है उसके बाद में उसको कार्य में लगाया जाता है। इसीलिए आज ये समापन सत्र में फाइनल आपको ये लेकर के जाना है अर्थात स्पिरिचुअली इंपावर होके जाना है जिससे आप अपने कार्य में सफल होते रहें। अब क्वेश्चन आता है कि इंपावर किसको करना है। जैसे हमारे अवधेश प्रताप जी ने कहा कि अपने शरीर को इंपावर करने के लिए तो हम सुबह से बहुत सारी ध्यान देते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वास्तव में हमें इंपावर किसको करना है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल इंपावर का कनेक्शन सीधा है इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है जिसको अनेक भाषाओं में और अनेक धर्म में अनेक तरीकों से बताया गया है, जिसको किसी ने रूह कहा, किसी ने स्पिरिट कहा और किसी ने आत्मा कहा, किसी ने उसको और दूसरे शब्दों में भी कहा होगा। तो वो हमारे शरीर को भी चलाती है और हमारे कार्यक्षेत्र को भी चलाती है, क्योंकि जब ये आत्मा इससे डिटेच हो जाती है उसके बाद में आपका ये प्रोफेशन में आप कितने भी बहुत बड़े वकील हों, बड़े बहुत बड़े जज हों, लेकिन वो सारा वहीं पर एक तरह से समाप्त हो जाता है। तो जब हम इसको इंपावर करेंगे और इसको इंपावर करने के लिए इसमें 7 शक्तियां ऑलरेडी विद्यमान हैं, क्योंकि आत्मा मीन्स ही शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। लेकिन हमने जो आत्मा के अंदर जो शक्तियां विद्यमान है जिसको हमें इंपावर करना है उसके प्रति हमें आज तक किसी विद्यालय में किसी भी वकालत के प्रोफेशन में भी बताया नहीं गया। शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे, क्योंकि बहुत सारी लॉ की किताबें लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इसमें ये सब्जेक्ट शायद मिसिंग है। अगर मैं सही हूं तो हो सकता है मैं भूल भी, लेकिन जब वास्तविकता के ऊपर हमने इस पर सुना नहीं, समझा नहीं, बताया नहीं गया कि हमने उस पर गौर नहीं किया तो इंपावर कैसे करें। इसलिए इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी को प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा ने विश्व के अंदर इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करना पड़ा, जहां पर केवल जुरिस्ट को नहीं लेकिन विश्व की हर आत्मा को एम्पावर किया जाता है, क्योंकि उसको अपना बोध कराया जाता है कि आप कौन हो। जब हम उसको इंपावर करते हैं था जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, उन आंतरिक शक्तियों के अंदर हम विचार करते हैं और उन आंतरिक शक्तियों को इंपावर करने के लिए एकमात्र साधन है वो है परमात्मा से कनेक्शन, जिसको हम राजयोग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। और मैंने वही कहा कि आप 3 दिन से शायद वो जरूर कर रहे होंगे, मेरी आशा विश्वास है। तो जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां जो है इंपावर हो जाती हैं, वो आत्मिक शक्तियों की जो है दक्षता बढ़ जाती है और वही आज की जरूरत है। आप विचार करिए कि एक ऐसा प्रोफेशन मैं बहुत हमारे ऑनरेबल जजेज लर्नेड एडवोकेट से सुनता हूं कि हम रात को 2 बजे सोते हैं। आप विचार करिए कि आज दुनिया के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स और उनको सामने एक ऑप्शन रहता है कि हे ये हमारे वकील साहब लर्नर एडवोकेट या हमारा कोर्ट हमारे को न्याय दिलाएगा। तो वो तो आकर के अपनी समस्याओं को आपके सामने रख करके फाइल दे करके और जहां तक है वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के जाता है। तो ऐसे अनेक फाइल्स को आप डील करते हैं तो आपको कितनी आंतरिक शक्तियों की जरूरत है, ये विचार करने की बात। और आपके अंदर वो विचार आंतरिक शक्तियां अगर नहीं है या कम है या कमजोर है तो जो व्यक्ति लिटिगेशन लेकर के आपके सामने आएगा उसको आपसे क्या वाइब्रेशन मिलेगा। तो इसलिए आपको उस आत्मा को रिलैक्स करने के लिए एक बहुत सुंदर सा तरीका है कि आपके अंदर वो आंतरिक शक्तियां जागृत हैं, इंपावर्ड हैं, तो आधा रिलैक्सेशन उस लिटिगेंट को आपके सामने आते ही मिल जाएगा। और वैसे ही बात आती है जजशिप की, अर्थात जो हमारे कोर्ट में जज होते हैं, तो उनके अंदर भी वो निर्णय तब ले पाते हैं, भले ही हम ये कहें कि हमारे जो कानून बने हैं, हमारे विश्वरूप चौधरी साहब ने भी बताया कि कानून के मुताबिक उनको निर्णय लेना होता है, ये हकीकत है। लेकिन उसके बाद में भी निर्णय के अंदर भी, जैसे हमारे नागरिक में बता रहे थे कि एक डिसीजन जो है वहां पर जो नीचे के कोर्ट में दिया गया वो डिसीजन जो है हाईकोर्ट में बदल गया, हाईकोर्ट में जो निर्णय दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट में बदल गया, मैटर सेम है। तो कहीं न कहीं वहां पर भी जो है वो एक इम्पावर्ड अर्थात स्पिरिचुअल इम्पावरमेंट की बात आती है, तभी वो एंगल जो जज साहब बैठते हैं उसका एंगल उनका चेंज होता है और वो एक दूसरा डिसीजन दे देते हैं, मैटर तो सेम ही आता है। इसीलिए जो जज साहब हैं या जो लर्नेड एडवोकेट्स हैं वो अगर देश को, विश्व को या समाज को एक सही दिशा देना चाहते हैं या हम ये कहें कि क्राइमलेस सोसाइटी को स्थापित करना चाहते हैं तो ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होना जरूरी है। और ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट मीन्स हमारी आत्मिक शक्तियों को जागृत करना और उनको सशक्त करना। और वो मैंने बताया इस विद्यालय का विशेष सब्जेक्ट वही है कि परमात्मा से कनेक्ट करना। तो उनके द्वारा जैसे कि सूर्य से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और अंधकार ऑटोमेटिक चला जाता है, हमें अंधकार को भगाने के लिए कोई दूसरी साधन की जरूरत नहीं है, रोशनी आते ही अंधकार ऑटोमेटिक छुप जाता है। और आज समाज के अंदर जो जितने भी समझो कि केसेज हो रहे हैं, लिटिगेशन हो रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि इंसान अभी इतना कमजोर हो गया है, उसके अंदर इतनी आंतरिक शक्ति कम हो गई है जिससे कि वो एक छोटी छोटी बात को लेकर के भी वो कोर्ट के सामने, लर्नर्ड एडवोकेट के सामने आता है। तो उसको भी इम्पावर करना, क्यों, वो तो कमजोर ही है। और अगर जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर बीमार व्यक्ति एक बीमार डॉक्टर के पास आएगा तो उसको दवा या उसको सफा कौन देगा, तो ठीक इसी प्रकार से अगर वो लर्नर्ड एडवोकेट भी इम्पावर्ड नहीं है स्पिरिचुअली तो वो उसको कैसे उसके रिलैक्सेशन दे सकता है। तो इसलिए ये इस विश्वविद्यालय ने ये जो टॉपिक रखा है आज के इस समय के मुताबिक बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को इम्पावर करना है अर्थात अपनी आत्मा को सशक्त करना है, और सशक्त करने से हमारा इस सोसाइटी को लिटिगेंट फ्री कर सकते हैं, क्राइम फ्री कर सकते हैं। और यही इसकी एक हम सोच है कि आने वाली दुनिया जिसको हम सतयु कहेंगे, जिसको जहां पर कि कोई क्राइम नहीं होगा, जहां पर ये प्रोफेशन भी नहीं होगा, जहां पर कोई एडवोकेट जजेज की जरूरत नहीं है, कोर्ट की जरूरत नहीं है, वो दुनिया स्थापन करने के लिए जहां पुलिस भी नहीं होगी, ये हमारे को एक ही सूत्र है, वो है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। हमारी आत्मा को करने से ये सारी बातें ऑटोमेटिकली इस संसार में, समाज में, हमारे मन में, हमारे परिवार में संभव हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति।
नथमल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सुंदर विचार आपने हमारे सामने रखे। न्यायविदों की समाज में बहुत बड़ी भूमिका है, अपराध मुक्त समाज बनाने में न्यायविदों को और आगे आना पड़ेगा और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, आपने बताया। मैं अभी निवेदन करना चाहूंगा हमारे वीडियो विभाग से कि वो दो मिनट की जो फिल्म है जुरिस्ट विभाग की सेवाएं जुरिस्ट विंग की जो सेवाएं हुई हैं उसकी दो मिनट की वीडियो दिखाएंगे। इसमें 250 से ज्यादा प्रोग्राम हुए हैं।
नमस्कार, ओम शांति। टू एक्सपीरियंस पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, इसी उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज का जुरिस्ट विंग लेकर आया है लॉ एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक नेशनल कैंपेन, जिसकी लॉन्चिंग दिल्ली ओआरसी में 4 अक्टूबर 2025 को की गई। इस अभियान का शुभारंभ दिल्ली हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस मिसेज मिनी पुष्करणा, अन्य कई जजेस एवं विशेष हस्तियों द्वारा किया गया। भारत की महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इस कैंपेन और जुरिस्ट विंग की सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया। खुशखबरी है कि आप सभी इसका लाभ लें और कार्यक्रमों में स्वयं पधारकर अन्य मित्रों को भी साथ लाएं। आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है। ओम शांति।
आप सभी से भी ये निवेदन है कि इस कैंपेन में आप अहम भूमिका निभाएं और अपने अपने स्थान पर जुरिस्ट विंग की सेवाओं में सहयोगी बने। कब आपको प्रोग्राम रखवाने हैं यदि अपने स्थान पर, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर लता बहन जी और हमारी चेयरपर्सन पुष्पा दीदी से संपर्क करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भ्राता प्रशांत कुमार मिश्रा जी से, जो स्पेशल जज विजिलेंस भुवनेश्वर से पधारे हैं। भ्राता प्रशांत कुमार मिश्रा जी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं। आप वर्तमान में स्पेशल जज विजिलेंस भुवनेश्वर में हैं। आप फैमिली जज के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उड़ीसा के अलग अलग जिलों में न्यायाधीश के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रशांत कुमार मिश्रा जी से।
ओम शांति। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु ओडिशारु आसी ए पवित्र माटी रे आपण मानको प्रणाम करूछि। रेस्पेक्टेड गेस्ट फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, बोथ रिटायर्ड एंड सीटिंग, रिव्यूअर राजयोगिनी बीके मनोरमा जी, डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिस नोबल इंस्टीट्यूशन, डिस्टिंग्विश्ड लॉ प्रोफेसर्स, लर्नेड एडवोकेट्स, फेलो मेंबर्स ऑफ द जुडिशियरी एंड एस्टीम्ड लीगल लुमिनरीज, बिफोर आई स्टार्ट माई डेलिबरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू पुट फोर्थ बिफोर द ऑगस्ट ऑडियंस व्हाई दिस टॉपिक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर प्रॉस्परस जूरिस्ट हैव बीन चूजन इन द वैलिडेटरी सेक्शन। वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर द लास्ट टू डेज ऑन द टॉपिक वैल्यूबेस्ड जस्टिस, द सोल ऑफ लॉ एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स स्पेशली मेंट फॉर द जूरिस्ट। बाई जूरिस्ट वी मीन जजेस, द लॉयर्स, लॉ प्रोफेशनल्स, लॉ टीचर्स एंड एनी अदर मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी डीलिंग विथ दिस ब्रांच ऑफ लॉ, आइदर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और टू गिव बेनिफिट टू एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। द वैलिडिटी सेशन दिस टॉपिक एस्यूम्स significance, the topic thy name suggests spiritual empowerment, and perhaps the organizers who selected the topic, they thought it that spiritual empowerment is highly essential to make the jurists prosperous. I attend this function, this jurist conference, and I am here as a listener, but incidentally I have been chosen by Paramatma Almighty through National Coordinator Natmal Bhaiji, who requested me to chair this session as a guest of honor. I hope everybody will agree with me that judges are good listeners and seldom they are good speakers unless help from bar. So, before delving with the topic, I first of all I would like to say that India is a democratic state where rule of law prevails, because nobody is above law, and to ensure rule of law, it is the duty of the jurists to see that rule of law prevails, whether they are judges or lawyers or law teachers or any other professionals dealing with law. So, I thought it proper to prepare a small write-up to be read out here for appreciation of the audience for their valuable suggestions, guidance, and adoption if considered valuable. Indeed, it is a proud privilege to be part of this valedictory session and speak few words in this august audience in the lap of Aravallis at this spiritual university. I thank the noble institution to give me the opportunity to speak on spiritual empowerment. Perhaps no one needs this message more than those of us who deal day by day with the shadows of public life. Now I want to put forth few words from the perspective of a judge dealing with vigilance cases. As special judge vigilance, my courtroom, where state's anti-corruption machinery meets the citizen, where I see trap cases, DA cases, abuse of office, and the quiet erosion of public trust. My duty is external vigilance, to weigh evidence, apply the provisions of Prevention of Corruption Act, besides other laws, and deliver deterrent judgments where possible. Yet, I have learned that no amount of external vigilance can succeed in that without internal vigilance. The same greed, fear, and compromise that we witness in others can silently enter our own minds. A judge who is not vigilant within cannot remain incorruptible without. Spiritual empowerment is that inner vigilance which is the constant silent audit of one's own thoughts, motive and desires. Why a vigilant jurist needs spiritual strength? Because in vigilant trials, pressure is intense. The accused is often powerful, the evidence is technical, and public opinion impatient. There is temptation to delay, to dilute, to look away. There is also the opposite danger, to become harsh, cynical, or to assume guilt before proof. Spiritual empowerment equips us with three shields. That is to say, Vivek, that is discriminating intellect, to see through manufactured evidence and false defenses, and to recognize truth even where it is unpopular. Rajyoga teaches us to be detached observers, the very quality of a vigilant judge needs. Second one is sahan shakti, that is tolerance, to hear prolonged arguments, to face media trials, to withstand transfer pressures without losing mental balance. Third one is nirbhayata, that is fearlessness. Corruption cases test courage. When you are spiritually enriched, anchored, you know you are accountable not only to appellate courts, but to the supreme judge, I mean the Paramatma, and after all, to your own conscience and the divine. That faith makes you fearless and fair as well. Everybody will agree with me that prosperity without purity is peril. The word prosperous in our topic is deliberate. A vigilant jurist knows better than most that prosperity earned through wrong means destroys both the individual and the institution. Real prosperity is a divine sampati, that is daivi sampati, the divine wealth. Integrity that lasts your sleep, let you sleep peacefully, respect that outlive your tenure, and quiet satisfaction that you did not sell your pen. Kautilya warned in his famous treatise Arthashastra, just as it is impossible not to taste honey placed on the tongue, so it is impossible for government servant not to eat off a bit of revenue. Our ancestors know the human frailty we persecute. Spiritual empowerment is the antidote. It gives us the strength to keep the honey on the tongue but not swallow it. From Mount Abu to anti-corruption courts, what does this sacred place teach a vigilance court? First, soul consciousness. When I remember that I am a soul, not just the judge. The chair does not become an ego. The accused is also a soul who has earned justice, then has room for fairness and reform. Second, accountability. Accountability to one. In Raja Yoga, we practice being accountable to the Supreme, that is Paramatma. That habit makes departmental accountability and judicial accountability natural. Third, silent power. The greatest vigilance is done in silence. The silence of a speedy mind, steady mind, that cannot be purchased, threatened or tired. So, before parting with my speech, it would be proper on my part to quote a Sanskrit teaching, that is Dharma Rakshati Rakshato. So with these words, with a sense of humility and thankfulness to the organizers for giving me opportunity to speak few words, may not be palatable to all and sundries, but whatever I felt proper, I tried to put it as brief as possible. Thank you. Jai Jagannath. Om Shanti.
Bahut bahut dhanyavad Brata Prashant Kumar Mishra ji ka. Aap special judge vigilance Bhuvaneshwar mein hain. Aapne apne vichar rakhe, zimmedari, karuna, nirbhayata, in sab jo divya gun hain, unko dharan karne ki vartaman mein kitni zarurat hai, aapne ye bataya. अभी मैं हमारे अगले वक्ता भ्राता राजकुमार यादव जी को मंच पर संबोधन करने के लिए बुलाता हूं। मैं आपका परिचय देना चाहूंगा। आप बीजेपी गीता केंद्र में 2012 से अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2014 से भारत सरकार के सीनियर एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका एक जजमेंट है जिसमें आपने आर्गुमेंट की है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिस पर एनएलयू बेंगलोर ने पीएचडी करवाई हुई है। आप उसके बारे में भी हमें अपने विचार बताएंगे और जिसके कारण आरक्षण की मांग को लेकर जो चलने वाले आंदोलन थे वो सब समाप्त हो गए हैं और आप ब्रह्मा कुमारी से काफी समय से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में धारण कर उनका प्रचार प्रसार करने में आप विश्वास रखते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं भ्राता राजकुमार यादव जी।
ओम शांति। मतलब ओम शांति हो गई आती मेरी, है ना, लाइट ही चली गई। ओम शांति। सभी लोग बोले एक बार ओम शांति। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत्त में। हमारे बहुत सारे जजेस और मित्र उड़ीसा से दिखाई दे रहे हैं तो उनके आगे जय जगन्नाथ कहना, जगन्नाथ का जयकारा लगाना बहुत जरूरी है। वैसे मैं ब्रजवासी हूं और ब्रज का ही जगन्नाथ है। नथमल भाई बिल्कुल ठीक बोले हम तो। यहां पर आए हुए माननीय चेयरपर्सन मेरे बड़े भाई राठी साहब के चरणों में अपना वंदन करते हुए, बड़े भाई अवधेश प्रताप सिंह जी, नथवल भाई का नाम ले लिया है, प्रशांत मिश्रा जी और हमारी दीदी और मेरे दोनों मित्र प्रदीप भाई और मुकेश आहूजा जी को मैं अपना वंदन करते हुए और बाबा के चरणों में अपने यहां शीश नवाते हुए आपसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करता हूं। आज क्योंकि समापन सत्र है तो ये समापन नहीं, नई शुरुआत है, आगे की शुरुआत है। यहां से आप लोग पिछले 3 दिन से लगातार कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी होगा जिसने कुछ ग्रहण ना किया हो, सब ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया होगा। और सबसे ज्यादा हमारे सीवाल साहब ने जो अपना प्रवचन दिया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और उसमें भी जो हमारा कंटेम्प्ट का खतरा है उसको उन्होंने हमें चेताया था। तो खैर कुल मिला के बात होती है, स्टार्टिंग होती है कि हमारा जो सेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है। आज का जो टॉपिक है वैल्यू बेस्ड जस्टिस। भाई साहब अवधेश प्रताप जी ने बहुत बढ़िया कहा कि जस्टिस होता ही वहां है जहां वैल्यूज स्टार्ट होती हैं। बिना वैल्यूज का कोई जस्टिस हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? आज तक तो हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो न्यायाधीश यहां पे न्यायाधीश है, ऊपर एक और न्यायाधीश बैठा हुआ है, चाहे हम अधिवक्ता हों, चाहे जज हों, जूरिस्ट हों। अधिवक्ता जूरिस्ट और जजेस में फर्क है। जूरिस्ट सबसे बड़ी चीज है, हम लोगों से बड़ी चीज होता है जूरिस्ट, क्योंकि उसका जूरिस्ट प्रूडेंस होता है, हमारा जनरल प्रूडेंस है। वैसे वकीलों का और जजेस का भी जूरिस्ट प्रूडेंस होता है, पर जूरिस्ट बड़ी चीज है। तो हमको इन सब चीजों का पालन करते हुए न्याय, न्याय केंद्र बिंदु है। गीता में जब स्टार्ट होता है, भगवान प्रवचन देते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जब हथियार टांग रख देते हैं, बैठ जाते हैं कि भाई मुझे तो अब पसीना आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब उन्होंने स्टार्ट किया था कि आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारी पहली जूरिस्प्रूडेंस गीता है। मेरे ख्याल से आप लोग सहमत होंगे इस बात से कि गीता पहला ही जूरिस्प्रूडेंस है जो ये बोलता है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तिक्त्वा धनंजय। तो गीता का ये जो है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तिक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध समोभूत्वा समत्व योग उच्यते। योग क्या है? योग है कि अपने कर्म में पूरी तरह से लगन लगा के ईमानदारी से, सहजता से, मानवता का कल्याण करते हुए जो डेलिब्रेशन दिया जाए उसको ध्यान में रख के जो कार्य किया जाए वही न्याय है। और इस न्याय को करने का दायित्व तो प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति के ऊपर है, परंतु हम क्योंकि न्याय के क्षेत्र में आते हैं और न्याय के क्षेत्र में आने वाले का के ऊपर सबसे ज्यादा दायित्व है कि वो न्याय करे। चाणक्य ने कहा एक बार, अगर सिस्टम भ्रष्ट है चलेगा, मंत्री अगर भ्रष्ट हैं तो भी चलेगा, परंतु अगर न्यायाधीश अगर भ्रष्ट हो जाए तो उस देश को बचाने वाला कोई नहीं है। न्यायाधीश पृथ्वी पर भगवान के बाद में माई लॉर्ड हैं, उनके हाथ में आदमी का जन्म है, सॉरी जन्म नहीं है, मृत्यु है और जीवन है। मृत्यु दे सकता है और जीवन को बचा सकता है। तो परमात्मा के बाद में न्यायाधीश की ही कार्य करता है। तो जो भी कार्य करें, हम वकील के रूप में करें या न्यायाधीश के रूप में करें, सिर्फ एक ही बात करनी है कि अपनी अंतरात्मा को जरूर सुने। अंतरात्मा बोलती जरूर है, कोई भी हो, कैसा भी हो, परंतु हम उस अंतरात्मा का हनन कर देते हैं, दबा देते हैं, नहीं सुनते उस बात को और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा भी क्या करती थी, ठीक है, आई विल टेक एडजर्नमेंट, विल सी यू इन द नेक्स्ट बर्थ, Your karma will be there. You will have to face the consequences. Music of not A.R. Rahman, but music of Yama will be faced. Right? तो हमें यही सारी चीजें करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में भगवान ने आपको दो हाथ दो पैर आंख नाक कान सबसे स्वस्थ दिया है, मस्तिष्क दिया है, ये उसकी बहुत बड़ी इनायत है। और ऊपर से आपको समाज में सम्मान देने वाला और कोई नहीं है, कौन है? वही भगवान है। जो देता है वो छीन भी लेता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने पर्सनल जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखी जहां मैंने गलत किया, बहुत दंड मिला, अच्छा किया तो तुरंत उसने मुझे फायदा भी दिया, अच्छा किया। और ऐसे लोग भी देखे जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े, जिनको आप बड़ा कह सकते हो क्योंकि वो पद को सुशोभित करते थे, इस वजह से बड़े थे, पर उनके कर्मों के अनुसार अगर आप देखें कि कहा ना अंतवंत में देहा नित्य शोक्ति शरीर ने अनाशनो परमेश यथा दश भारत, ये इसको पालन ना करते हुए उन्होंने क्या किया, कर्म अच्छे नहीं किए। तो अंत गति सो मति, अंत में जो आदमी की जो गति होती है ना, आपको अगर देखना हो कि आदमी अच्छा था या बुरा था तो उसकी अंत की गति देखिए, बड़े या छोटे को मत देखिए, ये नहीं देखिए कि राजा है या रंक है, जिया कैसे उससे ज्यादा है मरा कैसे। रामायण में हमें सिखाया जाता है कि जिया कैसे जाता है, पर महाभारत या गीता हमको मरा कैसे जाता है वो सिखाती है। तो खैर अब समापन समारोह है, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो तो थोड़ा सा और आगे बोलता हूं, अदरवाइज समापन की ओर बढ़ते हैं कि हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राठी साहब, वो बोलेंगे। आप कहें तो आप एक आध दो बोले, और लग रहा है सीवाल साहब ठीक है। देखो हमारे साथ होता क्या है कि जब हम न्याय के क्षेत्र में हैं, आपके पास में कई बार क्लाइंट ऐसा आता है जिसको आपके अंतर्मात्मा आत्मा नहीं चाहती कि इसका केस लें, लगता है कि बेकार है, गलत आदमी है। न्यायाधीशों के सामने भी यही परिस्थिति आती है, भयंकर परिस्थिति आती है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, भाग जाने का मन करता है, छोड़ने का मन करता है, सब कुछ करता है। तो उसमें उस स्थिति में भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है, अभी मुझे याद था, अभी मैं दोबारा रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, वो है नहीं, अभी मैं भूल गया, फिर आएगा तो बताता हूं। उससे पहले आगे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर देते हैं, और तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर कुल मिला के मामला आगे चलता है कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने कहा है आत्मा ही आपका, जो आत्मचिंतन मैंने बताया, जो मनी मैंने नहीं बताया, भगवान ने बताया, आई एम जस्ट रेफरिंग। उन्हें कहा कि आत्मा से ही आपका उद्धार हो सकता है, आत्मा ही आपको डुबो सकता है। तो उन्होंने श्लोक क्या कहा है, उद्धारेत्मा नात्मनाम अवसादयेत। मनुष्य का उद्धार या उसका पतन करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, वो स्वयं उत्तरदायी है। चाहे तो वो अपना उद्धार करते हुए संसार रूपी भव सागर को पार करते हुए परम धाम को प्राप्त कर सकता है, और चाहे तो नात्मनाम आत्मा का अवसादयेत आत्मा का अवसाद में डुबो सकता है, नरक में भेज सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों से कहूंगा, इन सब चीजों से उबरने का, इस विकट परिस्थिति से उबरने का एक ही मात्र साधन है, वो है राजयोग, जो ब्रह्मा कुमारी सिखाता है। ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाते हैं, अपने माइंड को, हाउ टू कंट्रोल ओवर माइंड। विचारों का सागर है, उमड़ता हुआ सुनामी है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। जिस समय आप राजयोग करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल भर भी लग सकता है, पर अल्टीमेटली आपका चित्त शांत होगा। इसलिए भगवान को सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जय जगन्नाथ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता राजकुमार जी यादव का। आपने बताया कि हम सबको अंतरात्मा की आवाज सुननी है। गीता का श्लोक आप थोड़ा सा भूल गए हो, कोई बात नहीं। अब मैं आमंत्रित करता हूं बीके मनोरमा दीदी को। आप वर्तमान में जूरिस्ट विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और मध्य प्रदेश में आपने सेंधवा, धामनोद, महू, इंदौर आदि सेवा केंद्रों पर सेवाएं दी हैं और 21 वर्षों से मुख्य सेवा केंद्र रतलाम में आप मुख्य संचालिका के रूप में सेवाएं दे रही हैं। आदरणीय दीदी जी ने MA LLB कर रखा है और पिछले 34 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। दीदी अभी हमें मेडिटेशन का अभ्यास करवाएंगी और यही मेडिटेशन का अभ्यास हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। आदरणीय मनोरमा दीदी जी।
ओम शांति। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, हमारे अपने ही जोन के हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय दीदी राठी जी, भ्राता श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, राजयोगी भ्राता नथमल भाई जी, प्रशांत कुमार मिश्रा जी, राजकुमार यादव जी, मुकेश कुमार ओझा जी एवं मेरे प्रिय भाई प्रदीप जी, आज हम सभी 3 दिनों से मैं कौन हूं, किसका हूं और मैं इस धरा पर क्यों आया हूं, इन तीनों का आपको आंसर मिला। मैं एक आत्मा हूं, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं और इस धरती पर क्यों आया हूं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और वो श्रेष्ठ कर्म मेरे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, या कहें कि हमारा हर कर्म अगर उस पिता परमात्मा की याद में हम करें तो उस कर्म में कुशलता आएगी। अपने आप को शक्ति से संपन्न करने के लिए, या कहें भरपूर करने के लिए, एक छोटी सी विधि अपनानी है। जैसे आप देखिए, एक राजा का बेटा कौन होता है, राजकुमार, ठीक वैसे ही हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, जो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। अगर हमें ये स्मृति रही हम उनके हैं, तो हम सब शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। राजयोग एक ऐसी सहज विधा है जो हमें अपने जीवन के नियमित कर्मों में, हमें अपनी हर कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना है या राज करना है। वर्तमान समय आप देखिए, राजा का राज्य नहीं है, प्रजातंत्र है, लेकिन हम सब राजा बन सकते हैं। किसके राजा? स्वयं के। आज मानव स्वयं का गुलाम बन चुका है। वो चाहता है मुझे ऐसा नहीं बोलना है, फिर भी क्या कहता, मुख से निकल गया। वो चाहता है मुझे बुरा नहीं देखना है, फिर भी वो देख लेता है। वो चाहता है मुझे बुरा कर्म नहीं करना है, फिर भी कर लेता है। इसको कहेंगे गुलामी, और राजयोग राजा बनाता। सबसे पहला हमें अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनाता। उसमें जो आंखें हैं वो इस ईश्वरीय ज्ञान से हम पवित्र बना लेते हैं। हम जिसको भी देखते हैं आत्मा भाई भाई के रूप में देखते हैं। मुख को हम आदेश दें कि वो मीठा बोले। मीठे बोल के अलावा वो कुछ ऐसा ना बोले जिससे किसी को कष्ट हो, तो हमारे मुख के हम राजा हैं। ऐसे हर कर्म इंद्रियों के हम राजा बन सकते हैं, और अपने मन मंदिर को हम शुभ और श्रेष्ठ कर्म संकल्पों से भरपूर करें। तो अभी हम जिस योग का अभ्यास करेंगे, अभी 3 दिनों से हम अपने को आत्मा समझ परम धाम में जाते, शिव बाबा से सारी शक्तियां अपने पे महसूस करते और इस धरा पे आते। आज भी वैसे ही जाके हम आएंगे, पर यहां आकर भी हमें क्या करना है वो मुख्य अभ्यास रहेगा। तो अभी हम सभी अपनी उस निजी यात्रा पर चलते हैं। ओम शांति। चारों ओर से अपने मन और बुद्धि को हटा करके इस सूर्य चांद और तारागण से भी पार जिसे हम परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक या निर्वाण धाम कहते हैं, उस घर में पहुंचकर अपने पिता परमात्मा से समस्त गुण और शक्तियों को अपने में समाहित कर इस साकार रंगमंच पर जो हमें पार्ट मिला हुआ है उसमें सबसे प्रथम हमारा वह घर, वह परिवार जिसका हर सदस्य भिन्न संस्कार, स्वभाव और कर्म करते हुए भी यह एक वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते की हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं उन सब की विशेषताओं को अप्रिशिएट कर स्वयं को और अपने परिवार को सुख और शांति से भरपूर करता हूं। साथ ही साथ वर्क प्लेस पर जितने भी मेरे साथी हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सब के प्रति भी मेरे मन में स्नेह का भाव, सहयोग का भाव, अपनत्व का भाव, और ये भी मेरा अपना एक श्रेष्ठ परिवार है, उस तरह मैं उन्हें प्यार करता हूं। साथ ही साथ विश्व की समस्त आत्माएं जो उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं, उनके प्रति भी मेरे मन में सबका भला हो और सब सुख पाए, इसी भावना से मैं निरंतर कर्तव्य करता रहूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय मनोरमा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेडिटेशन की विधि बताई और इसी विधि को हमें अपने जीवन में, अपने कार्य में लगाना है। अभी मैं आज के सभापति आदरणीय जस्टिस बीडी राठी जी, जो कि वाइस चेयरपर्सन जुरिस्ट विंग और फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ एमपी, आपको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे और अपने आज के जो सभापति हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। आप फॉर्मर जज मध्य प्रदेश इंदौर से हैं, आप लेक्सस मेवन लॉ फर्म के डायरेक्टर हैं और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, ज्योतिषी वास्तु विशेषज्ञ और थॉट रीडर भी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, परिवार सहित 50 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और विभिन्न स्थानों पर अपने जो वक्तव्य देने के लिए आप जाते रहते हैं। तो आदरणीय बीडी राठी जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट एमपी,
अब तो चूंकि 5-7 दिनों से हम सब लोग ज्ञान और योग की शिक्षा ले रहे हैं और समझ गए हैं कि यह सब परमात्मा का कार्य है, इसलिए भगवान या परमात्मा या प्रभु कहना उचित नहीं होता, क्योंकि दूरी लगती है, बाबा कहना नजदीकी लगती है, प्यारे पिता हैं। तो हम ऐसे मीठे प्यारे पिता के घर में आप सब पधारे और इतने भरपूर हुए, उसके लिए आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन और पुनः बधाइयां। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कि आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। ऑनरेबल जस्टिस अहलूवालिया साहब उस दिन आए थे और उन्होंने भी कहा था कि आपके श्रेष्ठ कर्म ही यहां आपको लेकर आए हैं। सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं हम सब लोग यहां, और इसको केवल एक बात के तौर पर साथ मत लेकर जाइए, एक विचार के रूप में लेकर जाइए कि मैं बहुत महान भाग्यशाली आत्मा हूं, और प्रतिदिन उठते ही ये सोचें कि आई एम द लकीएस्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड। और उस परमात्मा को, जैसे हमारे भाई साहब अवधेश प्रताप जी बता रहे थे, उठते ही गुड मॉर्निंग करिए, फिर देखिए उसका कमाल। दुनिया में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट कंपनी को बेचना होता है ना, तो कंपनी कहती है 8 दिन हमारे प्रोडक्ट को वापरिए और अच्छा लगे, आपको विश्वास हो जाए तो फिर खरीदिए। बाबा कहते नहीं, दुनिया में पहले उपयोग करते हो फिर विश्वास करते हो, पर यहां पहले मुझ पर विश्वास करो फिर मेरा कमाल देखो। आदरणीय मंच, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विश्वरूप चौधरी साहब अभी हमारे बीच बहुत सुंदर वक्तव्य देकर गए हैं, उन्हें जाना था। आदरणीय भाई साहब श्री अवधेश प्रताप सिंह जी एक्टिंग चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट कमीशन के भोपाल में, और कई विभिन्न पदों पर और बहुत विधाओं से आप भरपूर हैं। मेरी एक दिन बात हुई तो मैंने कहा भाई साहब आप जरूर आइए, आपका सब बेसब्री से इंतजार करेंगे। आप पधारे उसका बहुत शुक्रिया आपका। आदरणीय नथुराल भाई जी बहुत साधारण और सिंपल दिखते हैं, पर आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उनको ज्ञान में चलाने के निमित्त बने नथुराल भाई, और द्रौपदी मुर्मू जी भी आप सबको पता होगा ब्रह्मा कुमारी हैं और अपना दायित्व का निर्वहन भी कर रही हैं। भाई स्पेशल जज श्री मिश्रा जी, उनसे मुझे मेरी पहले भी भुवनेश्वर में मुलाकात हुई एक कार्यक्रम में, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और राजकुमार जी यादव की आपने जोश और जज्बा देखा अभी आपने, मैंने और नज़दीकी से देखा, आज तो उन्होंने वो बताया नहीं, बाकी बहुत एनर्जेटिक अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, श्रीमद् भगवद गीता में भी उतना ही हस्तक्षेप रखते हैं, और हमारी जुडिशियरी विंग के बहुत एक्टिव मेंबर हैं। और क्या कहा जाए, वो कह रहे थे कि न्यायाधीशों ने ईमानदार रहना चाहिए, मैं उनको याद दिलाता हूं कि परमात्मा आपको न्यायाधीश बनाए तो ये बात याद रखिएगा। भाई श्री मुकेश कुमार जी आहूजा दिल्ली से पधारे हमारे जुडिशियरी विंग के मेंबर, प्रदीप भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं, मनोरमा बहन, बहुत सीनियर राजू की टीचर रतलाम से पधारी, इस सभा में एक से एक विद्वजन बैठे हैं, ऑनरेबल जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, लॉ प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, सबका मैं अधीन अभिनंदन करता हूं। हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में और इस नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में कितना खूबसूरत सब्जेक्ट और बहुत हमने विचार सुने, और मुझे खुशी है कि मुझे लिखकर भी आया कि हम सब बहुत लोगों ने लिखकर भेजा कि इस बात से सहमत हैं कि वैल्यू बेस्ड जस्टिस ही कानून की आत्मा है। और मैंने उस दिन भी निवेदन करा था, और आज भाई साहब श्री अवधेश प्रताप सिंह साहब ने भी वही बात कही कि केवल न्यायालय का निर्णय वहां जस्टिस ढूंढे इतना ही उचित नहीं है, मनुष्य अपने जीवन में कई बार डिसीजन लेता है, वहां भी उसने जस्टिस किया या नहीं वो भी देखना है। हम डू एंड डोंट्स प्रतिदिन की दिनचर्या में करते हैं, शरीर के प्रति, दूसरों के प्रति, उन डू एंड डोंट्स में भी हमने जस्टिस किया या इनजस्टिस, इन सारे ब्रॉड स्पेक्ट में हम विचार करें तो जस्टिस का हम बहुत बेहद परिभाषा को लेकर यहाँ उपस्थित हुए थे, और सब ने बहुत सुंदर विचार रखे, आप सब लोग सहमत हुए, बहुत खुशी की बात। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो सब्जेक्ट है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर प्रॉस्परस जुरिस्ट, एक सफल और समृद्ध न्यायविद आध्यात्मिकता से कैसे सशक्त हो सकता है, और उसके सशक्त होना उसके लिए आवश्यक भी है, क्योंकि बिना उस सशक्तिकरण के वैल्यू बेस्ड जस्टिस कर ही नहीं सकता, चाहे न्यायालय में हो, चाहे दैनिक दिनचर्या में हो, समाज में हो या परिवार में हो। मैं उन विचारों को पुनः नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि सब दो तीन दिनों से हम लोग सुन रहे हैं और वे ही विचार हैं, और आप लोग भी सब सहमत हैं। हम एक बात देखें कि आखिर ये दिन क्यों आया। ये वही देश है जहां राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे, अशोक सम्राट थे, ये वही देश है जहां काजी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, फर्स्ट एंड लास्ट कोर्ट होती थी, हारने वाला भी संतुष्ट रहता था, कहता था कि मैं हारा हूं लेकिन हुआ न्याय है। आज जीतने वाला भी क्रिटिसाइज करता है, हारने वाला तो करता ही है, और सोशल मीडिया का तो क्या गजब है। तो ये सब व्यवस्थाएं क्यों उत्पन्न हुई, बाबा ने आज ही इस बात पर बहुत प्रकाश डाला मॉर्निंग क्लास में। हमारे यहाँ आप सबको पता होगा दो सेशंस होते हैं विश्वविद्यालय, एक प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरी। 3:30 बजे से प्रैक्टिकल शुरू होता है और फिर 7 बजे से 8 बजे तक थ्योरी का पीरियड रहता है। तो बाबा ने आज ही कहा कि बच्चे इसका कारण क्या है, इसका कारण है जो गिरावट आई मूल्यों में और जो मूल्य होना चाहिए और जो थे उसका एकमात्र कारण है प्यार नहीं मिलता। डिवाइन वैल्यूज हो या ह्यूमन वैल्यूज हो, उसको प्राप्त करने का अधिकार, आधार या उसका सोर्स केवल और केवल लव और अफेक्शन है। आज हम देखते हैं परिवारों में पेरेंट्स का भी लव एंड अफेक्शन नहीं मिलता। हमने इस देश में महात्माओं के, पुण्यात्माओं के, महान हस्तियों का खूब प्यार पाया। धीरे 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 आज बड़ी स्वार्थी दुनिया हो गई। अब तो ये स्थिति हो गई कि हमें पेरेंट्स का भी प्यार नहीं मिलता। कुछ शायद असहमत होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, पर आप बताएं मुझे कि वह माँ जो अपने नवजात शिशु को थोड़ा बढ़ने के बाद दूध पिलाना हो या उसको लंच या डिनर में कुछ देना हो तो मोबाइल पकड़ाती है और वो जानती है कि यह खिलौना जो मैं अपने बच्चे को दे रही हूं उसका जीवन निकल जाएगा। क्या यह प्यार है क्या पेरेंट्स का? इसकी कमी के कारण ही मूल्यों में गिरावट आई। जब माँ बाप का दुनिया का प्यार मिलता था तो हर आत्मा में ये वैल्यूज, ये संस्कार, ये सभ्यता, ये संस्कृति स्वतः उत्पन्न होती थी। और एक और कारण हम डायग्नोस करें कि ये वैल्यूज क्यों चली गई। जितनी वैल्यूज की बात करी हमने अभी तक, उसका एक और कारण बाबा ने आज ही कहा कि बच्चे व्यर्थ, जितने तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव होंगे, यूजलेस होंगे। थॉट्स भी 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव थॉट, एक होता है नेगेटिव थॉट, एक होता है यूजलेस थॉट। तो जो तुम्हारे यूजलेस और नेगेटिव थॉट्स हैं, उन थॉट्स के कारण ही, इन व्यर्थता के कारण ही तुम्हारी सारी समृद्धि चली गई, तुम्हारी सारी वैल्यूज खत्म हो गई। जो राजकुमार जी भी बता रहे थे अभी हम कि कितना सोचते हैं, कितना चिंता करते हैं व्यर्थ में। बाबा ने कहा बच्चे इस व्यर्थ को समाप्त करो तभी तुम समर्थ बन सकोगे। और व्यर्थ के विचार जितने अधिक थॉट्स चलेंगे उतने अधिक उत्पन्न होते हैं। जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, गंभीर थॉट्स होते हैं, वो उतने ही कम चलते हैं। 1973 की बाबा ने एक बार क्लास में बोला, मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं, निराकार शिव पिता उनकी वाणी की बात है, कोई साकार पिता या गुरु की बात नहीं है। 73 की एक वाणी केवल इस बात के लिए चली कि रूहानी जुरिस्ट कैसा होना चाहिए, जुरिस्ट की परिभाषा क्या है। और उस वाणी के कारण मैं थॉट रीडर भी बना, जैसा अभी प्रदीप भाई बता रहे थे कि किसी को देखने से पता लग जाता है कि ये क्या सोच रहा है। और उस वाणी में वो विधा दी हुई है, बाबा ने बताई कि कैसे तुम थॉट रीडर बन सकते हो। हम कर्म के आधार पर, बोल के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर न्याय करते हैं, यह लौकिक और अस्थाई न्याय है। इसीलिए उसमें जस्टिस का परिलक्षित नहीं होना पाया जाता है। लेकिन सही माने में यदि तुम जस्टिस करना चाहते हो तो दूसरों के संकल्पों को पढ़ो। तुम्हारे सामने कोई विटनेस आए, कोई अपराधी आए, कोई एडवोकेट आए, कोई साथी आए, उसको देखकर तुम उसके थॉट्स को पहचानो कि ये क्या सोच रहा है। उसके आधार पर जो न्याय होता है वो वस्तुनिष्ठ न्याय होता है। हारने वाला भी स्वीकार करता है क्योंकि उसको पता है यही सत्य है। और बहुत इजी प्रोसेस है थॉट रीडर बनना। बाबा ने उस वाणी में यह भी कहा कि बच्चे थॉट रीडर बनने के लिए पावर ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए, बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। जितना जितना तुम मुझे याद करोगे बाबा को पिता परमात्मा उतना उतना तुम्हारे थॉट्स कंसंट्रेट होते चले जाएंगे, और जितने थॉट्स कंसंट्रेट होंगे उतना आप में दो विशेष क्वालिटी उत्पन्न होगी। कौन सी दो क्वालिटी? बाबा ने कहा बच्चे एक तो परखने की शक्ति तुमको आएगी और दूसरी निर्णय करने की शक्ति तुम में उत्पन्न होगी। एकाग्रता से परखने की और निर्णय करने की शक्ति उत्पन्न होगी, और ये जब तीनों शक्तियां तुम्हारे पास होगी तो तुम सही माने में वैल्यू बेस्ट जस्टिस कर सकते हो, और वो केवल मेरी याद से आएगा। मेरी याने अध्यात्म, मेरी याद याने अध्यात्म। धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर है, आप सब जानते हैं, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और इन तीनों चीजों को भी, एकाग्रता, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति को भी उत्पन्न करने के लिए जो अध्यात्म अपनाते हैं, एक बात की बहुत आवश्यकता है जो कैटलिस्ट का कार्य करती है। कैटलिस्ट आप सब समझते हैं, उत्प्रेरक। जैसे अग्नि प्रज्वलित करना हो, थोड़ा कपूर डालिए, एकदम प्रज्वलित हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट का कार्य करता है इन तीनों शक्तियों को उत्पन्न करने में अध्यात्म की सहायता से, वो है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाओं का त्याग करिए। यदि आपकी 100% इच्छाएं हैं तो मानकर चलिए भाइयों कि खुशी 0% रहेगी, और यदि इच्छा 0% है तो खुशी 100% रहेगी। ये प्रैक्टिकल करके देखिए। और ये इच्छा मात्रम अविद्या का कैटलिस्ट यदि आपके साथ है तो हम अध्यात्म की विधा से पावर ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं। कुछ वानगी हम देखें कि कहां गलती करते हैं दैनिक दिनचर्या में। हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, पर कई बार तो चार लोग बात कर रहे हो तो ऐसा कहने में भी आता है क्या कुछ भी बोलता है ये, अर्थात निरर्थक। समय भी गया, खुद की एनर्जी भी गई और दूसरे का भी समय वेस्ट करा। ऐसा बोलिए हमारे मुखारविंद से कम निकले, पर ऐसे बोल निकले जो सार्थक हो। लोग कहें कि यदि ये व्यक्ति ने बोला तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे विश्वास है कि सार्थक बोल बोलता है। महाभारत का उदाहरण है आपके सामने। द्रोणाचार्य के पुत्र का हल्ला मचा की डेथ हो गई। द्रोणाचार्य ने कहा नेक्स्ट इम्पॉसिबल, कि मर ही नहीं सकता, चाहे अर्जुन कहे या भीम। तब युधिष्ठिर ने कहा, तब उन्होंने स्वीकार किया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मालूम था कि युधिष्ठिर जो बोलते हैं सार्थक होता है। मेरा कहने का आशय कि हम इतना सार्थक बोले कि लोग कहे कि यदि इन्होंने बोला है तो सत्य है। ये एक विधा डेवलप करना पड़ेगी जो हमें आध्यात्म से ही आ सकती है। हमारी वाणी देखिए कितनी मिठास से हम खुद जज करें। कटाक्ष, राग, द्वेष सब कुछ झलकता है उससे। मुगल काल के दो शब्द याद आते हैं मेरे को, एक है जहांगीर और दूसरा शब्द है नूरजहां। हम उसको दूसरे तरीके से देखो, जहांगीर जो सारे संसार में राजा ही करे, नूर जहां जो सारे संसार का नूर हो। एक अरब का मेरे को शेर याद आता है कि हमारी भाषा कैसी होना चाहिए। अध्यात्म हमें मिठास सिखाता है, हमारी वाणी में बहुत माधुर्य सिखाता है। वाणी के कारण लोग आकर्षित होते हैं, सार्थक होती है वाणी। यदि हमें अधिकार है हमारे पास तो हमारी वाणी में उतनी ही विनम्रता और माधुर्य होना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है। तो वो जो शेर है एक श्री शब्द होता है, मालवा में सीरा बोलते हैं, अब महाराष्ट्रियन में भी सीरा है ना हलवा। तो बर रूहे अकली में दिल, अरब का शहर है ये, बर रूहे अकली में दिल सिरी जुबां होकर, बर रूहे अकली में दिल सिरी जुबां होकर, और जहां गिरी करेगी ये अदा नूरे जहां होकर। यानी आपकी केवल भाषा शब्दों में मिठास है, सार्थकता है, तो आप सारे दिलों पर और विश्वमर राज्य कर सकते हो। और ये केवल विधा आध्यात्म से ही आती है, जिसका बहुत बड़ा अभाव है। एक और बात, हम कभी कल्पना भी नहीं करते और सोचते भी नहीं है कि मुझमें वर्तमान में रजोगुण चल रहा है या तमोगुण चल रहा है या सतोगुण चल रहा है। झांकें, देखें, रोज चेक करें, सतो प्रधानता है मुझमें, मेरे थॉट्स, मेरे एक्टिविटीज में, या तमो प्रधानता आ रही है, या रजोगुण का विचरण हो रहा है। हम नहीं कह पाए किसी को तो अपने ही कान में धीरे से कह दें कि मुझमें आज तमो प्रधानता है, उसको दूर करें, प्रयास करें अध्यात्म के द्वारा। सतो प्रधानता चल रही है, बहुत अच्छी बात है, उसे अध्यात्म के द्वारा और प्रज्वलित करिए। ये बहुत आवश्यक है यदि हम सही माने में मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। और अब तो हमारे मित्र ट्रंप जैसे यहां इस देश में हाजिर हैं, जो सबको निपटाने के लिए कितने ललायत हैं, खुद बेचैन है कि सब निपट जाए एक दिन में ही। तो जो कुछ बचा है समय, उसको मूल्यनिष्ठ बनाए। और इस बात पर कभी ध्यान नहीं दें कि पैसा ही, पद ही, प्रतिष्ठा, यही सब कुछ होता है, कभी नहीं होता है। ये तो सब यहीं चला जाएगा। एक शेर है ना कि याद रख बंदे कफन में जेब नहीं हुआ करती, फिर भी लोग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। आप सब यहां पधारे, इतना अच्छा भरपूर हुए। मेरा निवेदन और आग्रह रहेगा आपसे कि जब आप फील्ड में पहुंचे तब वहां ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र हैं, गली गली में। आपको पता होना चाहिए कि 195 देश में से 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था का नेटवर्क है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में। हो सकता है आपके घर से चार घर बाद ही सेवा केंद्र हो, जो सब बहनें संचालित करती हैं। वहां पहुंचिए, निशुल्क वो सेवा करती हैं, और वो बहनें आपका आधा घंटा, वो भी आपकी सुविधा अनुसार देंगी। आप आधा घंटा दीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, और समय मुकर्रर हो जाए तब इस फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझिए, फिर मेडिटेशन करिए, फिर अच्छा लगे तो नियमित जाइए, समय नहीं है तो घर पर रहकर करिए, और दोनों ही बात समझ नहीं आए तो बहन जी को नमस्ते कर सकते हैं। लेकिन करिए, आप पाएंगे कि आप जीवन में कितने मीठे बन गए हैं, लोग आकर्षित होंगे, आपके चेहरे से झलकेगा। परमात्मा की, मानव की सेवा हम जितना वाणी से कर सकते हैं, उससे अधिक सेवा आपके चेहरे, चलन और चरित्र से होगी। लोग फिर आपको ये नहीं देखेंगे किस जाति के हैं, आध्यात्म करते हैं या नहीं करते, आपको देख के ही खुश होंगे, क्या चरित्र है, क्या चेहरा है, सदैव खुश रहते हैं। ये खुशी कहां से लाए, ये सिर्फ आध्यात्म ही दे सकता है। मेरा ये भी निवेदन रहेगा आपसे कि आप वो दायित्व वाले, व्यक्तित्व वाले लोग हैं, हम सब लोग, जिन्होंने इस देश पर जब भी संकट आया, हम लोगों ने ही, जुरिस्ट लोगों ने ही आगे होकर उसको संभाला है। अब जब सारे विश्व में विकारों ने एक होड़ मचा रखी है, कैसे, कौन सा विकार पहले खत्म करे दुनिया, हम आगे आए, इस मानव जाति को संभालें, बचाएं, हमारी धरोहर है। विश्व रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो विश्व रहेगा। विश्व बंधुत्व की भावना से सबका भला करें, पेट पालन तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद, और पुनः आग्रह कि इसको जरूर अपनाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। और ये अनंत कोटि शुभकामनाएं और दुआएं भी कि जब यहां से लौट कर जाएं तो आप खूब उन्नति को प्राप्त करें, आप भरपूर रहें खुशियों से, और नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले पुनः पधारिए। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी, वाइस चेयरपर्सन जुरिस्ट विंग, फॉर्मर जज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, आपने आह्वान किया पूरे न्यायविदों को कि हमें किस मार्ग पर चलना है। आपने बताया कि अपने संकल्पों को हमें दिन में चेक करना है, सतो रजो तमो किस स्थिति में हैं हम, दिन में यदि चेक करेंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आज रात्रि 8:30 बजे एक कल्चरल प्रोग्राम है इसी हॉल में, आप सबको यहाँ पे शाम आना है 8:30 बजे। बहुत अच्छी तैयारी दिल्ली के बच्चों ने की है, जिसमें नाटक भी है, अंतर्मन की आवाज और कई प्रस्तुतियां भी होंगी उसमें। अब मैं निवेदन करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए भ्राता मुकेश जी आहूजा को। आप एडवोकेट हैं और जुरिस्ट विंग के कार्यकारी सदस्य हैं। आहूजा साहब के बारे में मैं बताना चाहूंगा, आप 1994 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और 1989 से वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं। आप एपीपी रहे हैं, एनसीटी दिल्ली के 7 वर्षों तक सेवाएं दी हैं और वर्तमान में आप सीनियर मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। आप प्रेरक वक्ता के रूप में समाज में सेवाएं कर रहे हैं, लोगों को जागृत करने की सेवाएं दे रहे हैं। अब ये वोट ऑफ थैंक्स देने की, धन्यवाद देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीके मुकेश भाई आहूजा।
ओम शांति। एक बार देवताओं के बीच में चर्चा चल रही थी कि दिन प्रतिदिन मृत्यु लोक में पीड़ा, संताप, असंतोष, दुख बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि देवता लोग सबको देते हैं तो बहुत गंभीर विषय उन्होंने लिया, ये ऐसा क्यों बढ़ता जा रहा है, हम ऐसा क्या करें कि सबका दुख, असंतोष, पीड़ा सब समाप्त हो जाए। तभी बीच में एक बात निकली कि इस घोर कलयुग की दुनिया में भी, इस संसार में ऐसा कौन है जो सुखी है या बहुत सुखी है। तो नारद जी को याद किया गया, उनको बुलाया गया कि जाओ आप मृत्यु लोक का चक्कर लगा के आओ और देखो कि संसार में कौन सुखी है, कौन सा व्यक्ति सुखी है या कौन सा वर्ग सुखी है, और एक दिन बाद आके आपको यहां बताना है सबको। तो नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक तो बहुत बड़ा है, 700 करोड़ से ऊपर आत्माएं हैं, कार्य बहुत विशाल है, एक दिन में संभव नहीं है, मुझे कम से कम एक मास का समय दीजिए। तो नारद जी को एक मास का समय दिया गया। मृत्यु लोक में गए, जगह जगह घूमे फिरे, बहुतों का इंटरव्यू लिया, इंटरेक्शन हुआ। एक मास का समय बीता, वापस दरबार में आए तो देवताओं ने पूछा, बताइए नारद मुनि, दुनिया में सबसे सुखी कौन? तो नारद जी ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे सुखी वकील। एकदम सब जगह शांति छा गई, उन्हें लगा नारद जी का दिमाग पर नहीं खराब हो गया। दोबारा पूछा गया, नारद जी आप क्या कह रहे हैं, दुनिया में सबसे सुखी कौन है? नारद जी फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए, दुनिया में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो फीस मिले, हारे तो अपील। यानी अपील मिले फिर भी फीस मिलेगी, फिर हार गए फिर वो आ गया अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में। आज जो है समाज में आध्यात्मिकता की नितांत आवश्यकता है। आज व्यक्ति के पास कितनी भी पावर, पैसा, कुछ भी रहे, रुतबा रहे, लेकिन अगर जीवन में आध्यात्मिकता नहीं तो कुछ भी नहीं, बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सब कुछ होते हुए भी अगर आध्यात्मिकता की पावर नहीं है तो व्यक्ति संसार का सबसे गरीब व्यक्ति है। एक बार एक राजा जो बहुत ही वीर बलशाली था, बहुत कुशाग्र बुद्धि था, उसने अपने से बड़े बड़े राजाओं को बहुत आसानी से जीत लिया था, लेकिन थोड़ा सा सनकी था। उसका मंत्री बहुत बहुत बुद्धिमान था। राजा में एक बात यह थी कि जिससे वो चिढ़ जाता था उसको जो है आजीवन कारावास में डाल देता था, लेकिन अपने मंत्री से बहुत खुश था वो, उसका मंत्री भी बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मंत्री जी की भी शामत आ गई, पता नहीं किस बात पे वो मंत्री जी से नाराज हो गए राजा, और मंत्री जी को बोला कि कल सुबह दरबार में मुझे इस पूरे समाज में से जो सबसे समझदार व्यक्ति हो वो मेरे सामने पेश करो, मैं उनसे चंद प्रश्न पूछूंगा, अगर उसने जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो उनके साथ साथ आपको भी आजीवन कारावास। अब मंत्री जी तो उनकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम, और घर गए बड़े सोचते हुए उदास एकदम। तो उनका एक 15-16 साल का बेटा था जो बहुत समझदार था, तो बेटे ने जब अपने पिता से पूछा कि आप इतने उदास निराश क्यों हो, तो मंत्री जी ने कहा कुछ नहीं, लेकिन बेटा समझ गया कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो बेटे ने जिद की तो मंत्री जी ने सारी बात बताई राजा की, तो मंत्री जी का पुत्र बोला अरे बस इतनी सी बात है पिताजी, आप मुझे साथ ले चलना, कोई बात नहीं। तो मंत्री को तो वैसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बेटे ने जिद करी तो वो साथ ले गए दरबार में। तो नियत समय पर राजा ने पूछा मंत्री से, हाँ जी बताओ, समाज में सबसे जो समझदार व्यक्ति जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके उसको मेरे सामने पेश करो। तो मंत्री ने अपने बच्चे को सामने पेश कर दिया, सारे दरबारी भी हैरान, राजा भी हैरान। तो राजा ने पूछा ये उत्तर देगा मेरे प्रश्नों का, तो मंत्री जी ने कहा हाँ ये देगा। तो बच्चा भी बोला हाँ राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मेरे को पता है कि आप बहुत बहुत समझदार हैं, आपके आगे हम कुछ भी नहीं है, आपने अपनी कम सेना के होते हुए बहुत विशाल विशाल राजाओं को जीत लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो राजा ने पहला प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। तो बच्चा एकदम बोला बुद्धि। राजा ने पूछा कैसे, कहता बुद्धि ने क्या क्या आविष्कार कर दिए, इंसान ने जो है चांद तक भी पहुंच गया, सागर की गहराई तक भी पहुंच गया, कुछ भी कर सकता है, और आपने भी ऐसे ऐसे युद्ध जीते हैं जो आपकी सेना बहुत छोटी थी, आपने अपनी बुद्धि के आधार पर जीते हैं। तो राजा खुश हो गया। तो राजा ने कहा अच्छा ये बताओ बुद्धि का भोजन क्या है, बुद्धि खाती क्या है। तो उसने कहा बुद्धि खाती है चिंता। मैं कैसे चिंता खाती है, कहते देख लीजिए समाज में जितने भी पढ़े लिखे विशेष विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं, रात के 2-2 बजे तक जागते पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा चिंतित वही रहते हैं। राजा ने कहा भाई बात तो ठीक है, दरबारी भी बोले। फिर राजा ने कहा अच्छा मैं तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछता हूं। तो बालक बोला राजन आपसे एक विनम्र निवेदन है, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं अपने लिए जो है क्षमा चाहता हूं, आप मेरे से फील नहीं करेंगे, मुझे कोई आजीवन कारावास नहीं भेजेंगे, मैं पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो राजन हैरान हो गए, लेकिन बोले चलो ठीक है आप पूछिए। बच्चा बोला आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, मैं आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर दे रहा हूं, मैं नीचे खड़ा हूं, ये बात तो न्याय संगत नहीं है, क्या ये न्याय है। तो दरबारी भी हैरान हो गए। तो राजन शिष्टाचारवश नीचे आ गए, बच्चे को सिंहासन में बैठा दिया और फिर पूछा बताइए बुद्धि करती क्या है। तो बालक बोला राजन अभी भी नहीं समझे, बुद्धि यही तो करती है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देती है। तो इस संगम युग के समय में सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव जो आके सत्युग की स्थापना करते हैं, हमारी बुद्धि को डिमिनाइज करते हैं, हमें ऐसी कला सिखाते हैं, ऐसा राजयोग सिखाते हैं जो हम अपनी वकील लोग प्रैक्टिस भी डिविनिटी के साथ करते हैं, अपने क्लाइंट से फीस तो लेते ही लेते हैं, लेकिन फीस से कहीं लाख गुना ज्यादा उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, और जहां ब्लेसिंग्स होती है वहां घर में सुख शांति फीस सब कुछ अपने आप आ जाता है। तो इस थैंक्स के सत्र में मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव का, जिनकी प्रेरणा से हम सब यहाँ एकत्रित हुए और इतनी सुंदर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और आप जैसी महान आत्माओं का भी यहाँ पर आना हुआ। साथ ही साथ मैं थैंक्स करूंगा हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विश्व चौधरी जी का, जिन्होंने कहा कि भारत एक होली लैंड है और पूरी दुनिया के लोग इसको होलियस्ट लैंड समझते हुए विशेष नजरों से देखते हैं और यहाँ पर आते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का, जो एक्टिंग चेयरमैन है, जो आपने बताया कि वर्तमान सभी विभागों से जो है मूल्य खत्म हो गए हैं। अगर हमने ऊंचा उठना है तो फिर से मूल्यों को आधारित बना के अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना होगा। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगी श्री नाथमल भाई का, जो कटक से आए हैं, जो दिखने में बहुत सिंपल है, हमारे आगे एक पर्सनैलिटी बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये बिल्कुल सिंपलिसिटी से रहते हैं और थिंकिंग इतनी हाई है कि हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी लाने के निमित्त बने इस ज्ञान में। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर प्रशांत कुमार मिश्रा जी का, जो स्पेशल जज विजिलेंस भुवनेश्वर से आए हैं, जिन्होंने बताया कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय ब्रदर राजकुमार यादव जी का, जिन्हें मैं प्यार से डबल प्रिंस बोलता हूं। यहां पे भी राजकुमार हैं और आने वाली दुनिया सत्ययुग में भी राजकुमार होंगे। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और बहुत ही एक्टिंग मेंबर हैं जूरिस्ट विंग के। आपने गीता को कोट करते हुए बहुत अच्छे तरीके से कहा कि गीता ही हमारी सबसे पहली ज्यूरिसप्रूडेंस है। चाणक्य को भी कोट करते हुए बहुत अच्छे आपने उदाहरण दिए कि करप्शन अगर किस लेवल तक पहुंच जाए तो उसके बाद जो है फिर भगवान ही मालिक है। और आपने बहुत सुंदर कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुने। अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते, उसका हनन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अंतरात्मा भी हमें खिंचौटना बंद कर देती है। फिर हम क्या गलत कर रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता लगता और हम गंदगी के दलदल में फंसते चले जाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय सिस्टर बीके मनोरमा जी का, जो रतलाम से विशेष तौर पर यहाँ पधारे और हमें प्रैक्टिकल रूप से मेडिटेशन करवाया, हमें परम धाम की सैर कराई, हमें आत्म अनुभूति कराई, परमात्मा अनुभूति कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय चेयरपर्सन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी राठी जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हर प्रकार से इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सहयोग दिया। और कैसे आपने बताया कि वैल्यू बेस्ड जस्टिस ही कानून की वास्तव में आत्मा है, कैसे हम अपनी विशेषताओं को स्पिरिचुअलिटी से बढ़ा सकते हैं और कैसे जो समय चल रहा है इस थोड़े से बचे हुए समय को हम मूल्यनिष्ठ बनाएं और अपने जीवन को अनमोल बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ब्रदर बी के प्रदीप जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मंच का संचालन किया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी आदरणीय रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन पुष्पा दीदी जी का, जो विशेष तौर से पांडव भवन करोल बाग से आई और इस आयोजन को, इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में आपने अपना एक एक पल दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय लता दीदी का, उनके साथ साथ श्रद्धा बहन का और सभी कोऑर्डिनेटर नथमल भाई जी का, रश्मि ओझा जी का, जो खास तौर पे मुंबई से आई हैं और ऐसी जो भी कॉन्फ्रेंस होती है हमेशा तत्पर रहती हैं सबकी सेवा के लिए। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी बीके भाई बहनों का, मीडिया का, जो पर्दे के पीछे रह के भी इस कार्यक्रम को, इस कॉन्फ्रेंस को, आयोजन को सफल बनाने में जिन्होंने अपना तन मन धन लगाया, जो हमारे सामने नहीं है, उनका विशेष विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे ज्यादा आप विशेष अनुभूतियों का, क्योंकि यदि आप ही सामने ना होते तो इस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल भी, इस शोभा को बिल्कुल भी चांद ना लगता। और साथ साथ अगर कोई रह गया हो तो उससे मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे को एक बात याद आ रही है, भ्राता राजकुमार यादव जी, जो आप सबकी कल्याण के लिए, आप सबके सम्मान के लिए एक श्लोक जो भूल गए थे वो कहना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो श्लोक कृपया करके सबको सुनाएं, आदरणीय भ्राता राजकुमार यादव जी, और उसके बाद मंच का पुनः संचालन प्रदीप जी के हाथों।
आहूजा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद दिला दिया और लिख के भी देखे गए कि ये श्लोक है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जीवन में ना, वकीलों के में खासकर, जजों के में तो नहीं, उन्हें कम आता, क्यों नसबल भाई साहब, हमारे में आता है कि इसका हमारी अंतरात्मा कुछ और बोलती है। और जब पैसा सामने दिखाई देता है, यार फीस तो आ रही है, क्या करें। तो उस समय बड़ी अजीब स्थिति होती है। तो उस समय के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उस केस को लें ना लें, लड़ें ना लें। कुछ बड़े अजीब से केस होते हैं, बड़े विभत्स किस्म के केस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति के लिए जो मुझे सबसे बढ़िया श्लोक लगा वो गीता में कहा है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो यथा युद्धाय युजयस्व न एवं पापम व्यापसज। सुख में दुख में लाभ हानि में जरा और व्याधि में जो संभाव एक समान अपना भाव रखो, उसमें लिप्त मत हो, लिप्तता ना रखें, संलिप्तता ना रखें। सब कार्य किसको समर्पित करना, ऊपर वाले को समर्पित कर दो कि जो मैं कुछ कर रहा हूं इसमें मैं लिप्त नहीं हूं। उस भाव से हम करेंगे तो सारे कार्य हो जाएंगे। और यही अर्जुन को कहा था, अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने पिता है, माता है, ससुर है, साला है, सब कुछ है, कि हाउ टू किल देम, मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सबो सबको क्या, मुझे समर्पित कर दो। और इन सबको समर्पित करने के बाद नेहा विक्रम नासास्तो प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमस्य तस्य त्रायते महतो भयात्। कि सबको समर्पित करते हुए आप मेरे प्रति नेह लगाओ, मेरे परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाओ, सबको समर्पित कर दो, आपको भयंकर से भयंकर भय भी नहीं सताएगा। तो अर्जुन के पास सबसे बड़ा भय वही था। तो हम भी अपने अपने फील्ड के अर्जुन हैं और हमको भी बहुत भय है। तो उस भय से निकलना है। प्रदीप भाई पीछे आ गए हैं, पर इनसे मैं इजाजत, दो मिनट जोड़ दो। अब ये तो हो गया, ये थोड़ा सा गंभीर विषय हो जाते हैं, पर ये गंभीरता कुछ नहीं है, थोड़ा सा ईमानदारी रखेंगे, सब ठीक है। अब अदालत की बात आ जाती है। अकबर इलाहाबादी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबने सुना होगा, बहुत बड़े शायर थे और वो जज भी थे। उस जमाने में जज होने के लिए ना ये नहीं होता था कि LLB की डिग्री जरूरी है, कोई भी जज हो सकता था जब सरकार जिसको चाहती थी। और अभी 1970 से पहले भी ऐसा जरूरी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जज हो जाते थे और जज होने के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया जाता था। हमें एक मिले थे, एक जेलर साहब, वो कहते थे कि फॉर 2 years आई बिकम मजिस्ट्रेट इन सम अदालत, देन देयर आफ्टर आई हैव रिवर्टेड बैक टू माई सेल्फ टू अगेन जेल। मैं कहा बहुत बढ़िया, जज जेलर से जज बने, फिर जेल चले गए। तो अकबर इलाहाबादी की कोर्ट में जो ना बहस चल रही थी, तो एक वकील साहब बड़े चीखते हुए बोले क्या जनाब, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तो अकबर इलाहाबादी ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, करे वकील साहब, उस अदालत से इंसाफ की दरकार, इस अदालत से इंसाफ की दरकार, ये तो अदालत ही दीवानी है। नहीं समझे, ये अदालत ही दीवानी है। दीवानी के दो मतलब होते हैं, एक सिविल है और ये बाकी तो दीवानी, दीवाना और दीवानी आपको समझ आ गया। तो अब हम अदालत में हैं, भगवान की अदालत में हैं। दीवानी समझ आई नहीं आई, दीवानी एक सिविल और एक दीवानी दूसरे वाली, मस्त कि ये अदालत ही दीवानी है, जिस अदालत से इंसाफ की दरकार, कि जनाब ये तो अदालत ही दीवानी है। तो इसी के साथ समापन समारोह में आप सबका, इधर का सबका हो गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहां आए, आप पधारे, आपका बहुत स्वागत है। और आप इस तरह से ही राजयोग से जुड़े रहें, इससे क्या है कि आपका हेडक्वार्टर शांत रहेगा। जब हेडक्वार्टर शांत रहेगा, यू कैन विन ऑल द बैटल्स। ऑल द वार पीसफुली, ओम शांति। देखो कोट खींचा गया इसलिए जा रहा हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मुकेश आहूजा जी का, बहुत अच्छे से धन्यवाद की परंपरा को आपने निभाया, और बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी का जो भूली बिसरी यादें उन्होंने वापस याद करके आप सबको सुनाई, और बहुत अच्छे अनुभव अपने साथ आपके साथ साझा किए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दो मिनट परमात्मा को याद करके कार्य को समाप्त करते हैं। हमारे अतिथियों को सौगात दी जा रही है, जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। भ्राता अवधेश प्रताप सिंह जी का जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पश्चात अभी दो मिनट याद करेंगे परमात्मा को, फिर कार्य को समाप्त करते हैं। समापन की कड़ी पूरी हो रही है, भ्राता राजकुमार जी का स्वागत हो रहा है। आप सबको अच्छा हंसाया बहलाया और गीता के श्लोक भी याद करवाए। प्रातः प्रशांत कुमार मिश्रा जी का स्वागत किया जा रहा है, आपको सौगात और ईश्वरीय प्रसाद देकर। अब दो मिनट परमात्मा को याद करते हैं और कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।